ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो आज के विषय के हिसाब से हम भगवान श्री कृष्ण और उनके अग्रज बलराम के मथुरा प्रवेश का वर्णन करेंगे, उसका शुरुआत। तो आप सुन चुके हैं कि कृष्ण का आविर्भाव कंस के कारागार में हुआ और अलख्य में वसुदेव उनको ले गए गोकुल में। कंस को पता नहीं चला, गोकुल में भगवान राम और श्याम बढ़ने लगे। कंस जो वसुदेव गोकुल से एक्सचेंज करके जो कन्या को लेकर आए थे, उनको जब मारने के लिए प्रयास कर रहा था तो उनका हाथ से फिसल करके उनके उपास्य देवी के रूप में उनको डांट करके गए। तो देवी से उनको पता चला कि उनका जो काल है वो तो कहीं प्रकट हो चुका है, कहाँ है एड्रेस नहीं बताया देवी ने, और उनको गाली दे कि तू ये बेचारे वसुदेव और देवकी को क्यों तंग कर परेशान कर रहा है। तो देवी से इस प्रकार सुन करके कंस बहुत दुखी हुआ, बहुत पश्चाताप किया और तुरंत वहीं से वापस जा करके और अपने बहन और भिनोई को जेल से मुक्त करके माफी मांगा और उनको गीता के दूसरा अध्याय समझाया। शरीर के आत्मा और शरीर के जो भिन्नता है आत्मज्ञान बताया। बोला कि देखो, मैं तो नहीं मारना चाह रहा था, इस विधि के विधान ऐसा है, मेरे हाथ में शायद मरने होंगे, मरने आने जाने थे, अब क्यों दुख करते हैं, एक्सक्यूज मी। बहुत उनसे माफ़ी मांग लिया और वो लोग भी बड़े बदाने बोले, चलो चलो आपका कोई दोस्त नहीं, ठीक है। फिर आ करके उनको ला करके ससम्मान अपने भवन में जैसे अच्छे से उनको रहने दिया। तो लेकिन वसुदेव का मन में तो है, देवकी का मन में है कि हमारे दोनों पुत्र गोकुल में बढ़ रहे हैं, सब खबर ले रहे हैं। धीरे धीरे जब सुना कि कालिया की फणे के ऊपर नाचे थे, बहुत उनका हृदय धड़कन बढ़ने लगा, क्या हुआ क्या हुआ। अब कुछ दिनों में देवर्षि नारद दोबारा आए कंस महल में। अब जैसे कंस ने सुना कि देवर्षि जी आ रहे हैं, सुनकर के तो पहले थोड़ा उनको लगा कि जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि वो भी मेरे साथ छल करते हैं, पिछली बार आकर बताए और मैं इसे क्या मारा, सब छह छह लड़का मार डाला और देवी ने बताया कि ये तो बेकार है, तेरा और कोई जन्म हुआ है, अष्टम गर्भ ते कन्या निकली। ये देवता लोग भी आजकल झूठ बोलने लगे, देवर्षि भी छल करते हैं, ऐसे मन में आया था। लेकिन बोला नहीं, देवर्षि ऐसे हैं, कुछ बातें तो उनसे पता चलता है, उनको इसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। तो आ करके प्रणाम किया, देवर्षि को स्वागत किया। तो देवर्षि ने बोले, कंस तू अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझ रहे हो। कंस बोला है मुझे बुद्धिमान इसी कुंड डांट रहे हैं, तू ठग गए। मैं ठग गया हूं? मैं क्या ठग गया हूं? आपने मुझसे छल कर रहे हैं, देवता लोग में झूठ बोल रहे हैं। बोले ना तो देवता कभी झूठ बोलते हैं, ना तो देवर्षि किसके साथ चीटिंग कर रहा है, तो फिर उनका तो आठवां लड़का ही नहीं हुआ, एक लड़की हुआ। और मैं बेकार उनको सब मारा, ये तो सब झूठ, कुछ ऐसे नहीं हुआ। बोले यही तो तुझे ठका गया, तुझे पता नहीं क्या। आश्चर्यचकित हो गया, आंख फाड़ के देखने लगा। बोले मूर्ख तुझे पता नहीं, वसुदेव के जो अष्टम पुत्र है, पुत्र और क्या, उसकी कन्या काहे को कन्या, पुत्र ही था। आपको पता नहीं, आपको कोई सिक्योरिटी की पता नहीं, उन्होंने रातों रात लकड़ गोकुल में छोड़ दिया नंद के यहां। अरे बाप रे बाप, ऐसा। और तुझे मारने वाले जो हैं वही बढ़ रहे हैं, आपको पता नहीं चलता कितने असुर को तो भजा मारे ना सब ना। सही बात तो आप कह रहे हैं, अगर वो कन्या अगर देवकी के बेटी होती, जिस दिन मेरे हाथ से फिसल गई उस दिन बोले बिचारी देवकी, अरे मां को थोड़ी इसे कहते हैं, सम्मान करके बोलती हो। तो ये तो मुझे अभी समझ में आ रहा है। अरे रे रे रे, गड़बड़ होगा। वसुदेव मरसद धोखा किया, अब भी उसको मार देता हूं। तलवार खींच लिया। नारद बोले मूर्ख ऐसे उनको मार देगा तूने? अरे उनको मार दोगे तो तेरे तो काल नहीं है, तेरे मारने वाले उनके पुत्र तो और कहीं, उनको मारने से क्या होगा, उनसे क्या तरह बिगड़ता है ना। मेरे से धोखा दिया? अरे धोखा दिया कुछ किया, अब तो हैं उनको देखने के लिए, वो आएंगे, उनको मार देगा तो आएंगे नहीं, भाग जाएंगे तो। अरे बहुत सही बात है, तो गड़बड़ी कर रहा था मैंने, तब क्या करूं। तो देवर्षि नारायण नारायण करके निकल गए। तो उन्होंने आकर के तुरंत मंत्रिमंडल बैठाया, लेकिन इमीडिएट सभा बुलाया गया और उस सबको बताया कि इसी से घटना। तो तुरंत वसुदेव और देवकी को बंदी बना ले, जिनमें कोई भाग ना जाए कम से कम, वो अगर रहेंगे तो वो भी आएंगे कभी ना कभी मथुरा में। तो लेकिन बहुत चिंतित रहा, सारे मंत्रिमंडल को बुला करके बताया कि नारद जी ने बताया इसे ऐसे हुआ है, वसुदेव के पुत्र तो वहां ट्रांसफर हो गए, वहां जाकर बढ़ रहे हैं, इसे को मार रहे हैं, ये निश्चित हो गया। तो फिर बाकी सारे असुर तो उनके लगभग मर चुके थे। एक महाअसुर था घोड़े के रूप में, उसका नाम था केसी, उनका सेनापति था, उसको बुलाया। केसी तो बोला ये कुछ नहीं, बड़े उपेक्षक किया उनके सुन करके। तो केसी को भेजा, बोले जाओ मार के आओ। जैसे दूसरे असुरों का भी हुआ था गति, ऐसे किसी का भी गति हुआ। तो उनके मैसेज सुन करके कंस बहुत चिंतित हो गया, अब क्या किया जाए। तो उनके मन में एक विचार आया कि सही में मैं जितने को भेज रहा हूँ ये 8-10 साल के बालक है, मार देता है इतने बड़े बड़े असुर नायकों को, उनका तो इतने बल नहीं होगा, क्या हो सकता है। तो उनका मन में विचार आया कि स्थान प्रबलम ना कि बल प्रबलम। बोलते कि स्थान के महत्व है, जैसे हमारे कहते हैं ना, आपने गली में कुत्ता भी शेर है, कुत्ता भी आपने एरिया में आपने आपको शेर समझता है। तो वो तो आपने गांव है ना, गोकुल के गलियों में वो तो आपने एरिया है। यहां पर ये मथुरा वाले जाएंगे सिटी वाले, उनको पता नहीं चलता, वो घुमा फिर मार देता है। हाँ ये समझ गया, अगर उनको यहां बुला लेगा तब उनका बल कहां जाएगा, इस एरिया में मेरा बल है, मेरे अनुचर है। तो बहुत प्रसन्न होकर के और मन में सोचने लगा कैसे उनको बुलाएं, लेकिन कैसे बुलाऊं, बुलाने से थोड़ी आएंगे। अगर उनको जबरदस्ती को बुलाऊं तो आएंगे नहीं, भाग जाएंगे, इसे तो कभी आएंगे नहीं। अगर किसी जबरदस्ती करके लाऊं भी, सारे देशवासी नगरवासी मुझे दोष देंगे, क्योंकि अभी तक तो मारने के लिए प्रयास किया, मारा नहीं, उसको बुला कर लाऊं, किस मुंह से बुलाऊंगा, क्या करूंगा। बहुत सोच विचार में पड़ गया, पढ़ करके एक बुद्धि निकला। तो सारे जो उनके मल्ल थे, जो सिक्योरिटी थे, और कुबलयापुर का महावत था, सबको बुलाया, बुला करके बोला देखो अब मेरे जो काल है कृष्ण बलराम, मैं उनको यहीं बुलाने जा रहा हूँ, आप वहाँ जा करके हमारे सब असुर नायक मर गए, अभी मैं यहीं उनको बुलाता हूँ, आप सतर्क रहिए, मेरे काल को विनाश करना है। असुर बोले आज्ञा कीजिए महाराज। तो 10,000 हाथी के बल रखने वाले कुबलया पीढ़ था, उसके केयर टेकर को बोला देखो खूब मदिरा पिलाकर रेडी करके रखो, मैं उनको बुला रहा हूँ, कल तक आज से पिलाना शुरू कर दो, जैसे बुलाएंगे उनको और उनको वहीं पे कुचल देना, ना मुझे बताए कहाँ पर कैसे प्रोग्राम। तो बोला देखिए ऐसे नहीं, मैं एक बहुत बड़ा फेस्टिवल करने जा रहा हूँ, सोचा कि कोई दोष नहीं दे उनको इस मर्डर के पीछे, तो वार्षिक उत्सव के घोषणा किया, सारे मिनिस्टर फिनिस्टर बुला कर बजट पास कराए, बहुत हाई बजट, वार्षिक उत्सव होगा एनुअल फेस्टिवल, क्या होगा ना धनुर्यज्ञ होगा, धनुर्यज्ञ होगा, और जो महेश्वर धनुष था उनके पास, धनुष उत्तोलन होगा, और शिवरात्रि आने वाला है तो महेश्वर यज्ञ होगा और सांबव धनुष को उत्तोलन किया जाएगा, विशाल धनुर्यज्ञ उत्सव होगा, ये तो हर साल होता ही है, और उसके साथ और भी छोटे मोटे इवेंट बहुत होंगे, जैसे एक दो इवेंट बताए, जैसे मल्ल युद्ध होगा, मल्ल का अखाड़ा प्रतियोगिता होगा, मल्ल प्रतियोगिता आदि होगा, तो इसे कई और इवेंट होगा, इसलिए सारे रंगशाला सजाया जाए, स्टेडियम तैयार किया जाए, पूरे मथुरा सिटी को सजाया जाए, सबसे बड़े वार्षिक उत्सव होगा, तो बहुत भारी खर्चा करके पूरे देशवासी, प्रत्येक देशवासी को आना पड़ेगा, कंपलसरी सबको आना पड़ेगा, और जहां भी जितने गेस्ट होंगे सबको बुलाया जाए और सबको पास कर दिया आइन, सब रेडी रहो, इतने बड़े फेस्टिवल का आयोजन करो धनुर्यज्ञ का। तो लेकिन उनको कैसे, कौन बुलाएगा जा करके, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, इस दोनों को कैसे बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे, मन में आया कोई ऐसे व्यक्ति की भेजना चाहिए जिनके ऊपर उनका पूर्ण विश्वास और आस्था हो, ऐसा व्यक्ति कौन है, अभी तक तो मैं जितने को भेजा सारे मेरे दूत असुर सब गए और सर मर के वहीं रहे, तो किसको भेजूं, तो मन में तुरंत आया ऐसे एक व्यक्ति है अक्रूर जी, जो वसुदेव के भाई लगेंगे और बड़े धार्मिक भी है, उनके बड़े सम्मान भी है, सारे वंश में उनको बड़े सम्मान करते हैं, बड़े धर्मप्राण है और मैच्योर्ड आदमी है, उनको कोई अविश्वास नहीं करेंगे, नंद बाबा भी उनको सम्मान करते हैं, ओ तो मेरा अभी ट्रेजरर बन बैठे हैं, वो तो गए नहीं छोड़ करके, तो उनको भेजता हूँ, तुरंत बुलाया, उस दिन एकादशी था, फाल्गुन कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन अक्रूर जी बोला हठात महाराज की विशेष कृपा क्यों मुझे भेले, मुझे भाई अपना कार भेजे उनको बैठा कर ले आओ, और जैसे अक्रूर जी आए सभा में वो स्वयं आसन से उठ पड़े, पहले तो कभी ऐसे सम्मान, उठ करके जा करके दोनों हाथ से अक्रूर जी के हाथ को पकड़ करके बड़े नम्र से बड़े भाव से बोलने लगे, देखो अक्रूर जी आप जैसे मित्र तो मेरा ना था ना होगा, पूरे जदवंश में भोजवंश में वृष्णि वंश में आप ही एक ही व्यक्ति है, एक ही पुरुष है जो मेरा पूर्ण हितैषी है, मेरा कल्याण तो आप ही चाहते हैं, जैसे स्वर्ग में इंद्र ने अपने छोटे भाई उपेंद्र के ऊपर पूर्ण भरोसा करके बड़े बड़े काम कर लेता है, तो ऐसे मैं भी महत्वपूर्ण काम आपके भरोसे में करता हूं, मेरे सब कुछ आप ही है, मैं जो योजना अभी करने जा रहा हूं उसके मूल सूत्रधार आप ही होंगे। अक्रूर जी को समझ में नहीं आ रहा था क्या इतने प्रेम कर रहे हैं हठात, कोई नीच व्यक्ति निष्ठुर व्यक्ति अगर इतने ज्यादा आपको सम्मान प्रेम करे ना तो समझो कुछ गड़बड़ी है, कुछ रहस्य तो होगा। अक्रूर जी बड़े नीतिज्ञ है, समझो बोले क्या है घटना, बोल नहीं रहा क्या काम करूं, किस लिए मुझे इतने प्रेम कर रहा है भाई इतने, फास्टिंग के दिन बुला करके अक्रूर जी उनको देखे आश्चर्य, बोल नहीं देखे वो दृष्टि से वो समझ गया कि वो जानना चाहते हैं कि क्या करना है, वर्त तो सही, क्या मेरा कर्तव्य क्या करना है आपके लिए। तो समझ गया, बोलने लगा, देखो आपको जाना पड़ेगा नंद ब्रज में। अच्छा, नंद ब्रज में जा करके जो दो लड़के हैं ना, ये दोनों लड़के वसुदेव के हैं, नंद के नहीं हैं, हैं मुझे पता चल गया। वसुदेव जी तो अक्रू जी तो पहले से ही पता था। बोले वो वसुदेव के लड़के हैं, वही दोनों मेरे काल है, ऐसा करे किसको नहीं बताना, मैं आपको अपना अपना आदमी समझ करके मैं बताता हूँ, मेरे जो प्लान किया हूँ, आप उनको पकड़ के ले आना। लेकर आएंगे, अभी तक तो जितने मेरे असुर को मार दिए वहाँ, लेकिन यहाँ बुलाएंगे तो यहाँ उनका बल कहाँ रहेगा, यहाँ तो मेरे एरिया है, मेरे एरिया में तो हम उसको मार देंगे। और ऐसे करूँगा, मैं फेस्टिवल का आयोजन कर रहा हूँ, उनको बुला के लाना, गेट पर ही हाथी कुचल देगा उनको, बाई चांस उनसे बच गए तो महामल्ल फिट हैं, वो मार के उनको मार देंगे, और बाई चांस उसमें बचे तो मैं ही धनुरुत्तोलन करूँगा, किसी को पता नहीं चलेगा, धनुष तो ऐसे उठाकर मारता हूँ, उनके ओर संधान करूँगा, वही मर जाएंगे। तो बिल्कुल थ्री फेज में तैयार करके रखा हूँ, और आप ऐसा करो जाके उनको बुलाकर ले आना, और उनको जब मार दूंगा तो बाकी तो सबको बुलाना है, बाकी सारे जदुवंशी और ब्रजवासी सबको मार दूंगा, मेरे पिताजी को भी मार दूंगा, सबको मार दूंगा, हाँ आप समझ रहे हैं ना। तो मेरे तो सब सखा ससुर साहब है, जरासंध जी, दिवीद और बाण तो मेरे मित्र हैं, तो पूरे निष्कंटक राज्य भोग करूंगा, और आप तो मेरे मित्र ही हैं, समझ रहे हैं आपका पोस्ट कितना प्रमोशन हो जाएगा। तो इसलिए आप यथाशीघ्र जाइए, और आप मेरे मित्र हैं, ये बात किसको नहीं बताना, मेरे जो प्लान है मंत्रणा किसको नहीं बताना। तो ठाकुर जी बोले, महाराज फिर उनको क्या बताकर लाऊं, मैं जाऊं मेरे साथ ऐसे आ जाएंगे क्या। बोले नहीं, इन्विटेशन कार्ड ले जाओ, कार्ड ले जाना, एनुअल फेस्टिवल है ना, बहुत भारी इस बार, सबसे बड़ी उत्सव वार्षिक उत्सव हो रहा है, और धनुर्यज्ञ होगा, मल्ल युद्ध होगा, पूरे नगर का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, पूरे नगर सज रहा है, इतने बड़ी बजट खर्चा हो रहा है, इतनी बड़ी भोजी भात भंडारा डांस कीर्तन बहुत सारे फेस्टिविटी है। तो इसके लिए वो मेरे आदर के भागिनेय है, मेरे भांजत है अटल, तो उनको विशेष निमंत्रण देगी, वीआईपी पास देकर लिख रहा ना वो उनको छोड़ देंगे नंद बाबा आदि, नहीं 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 उनको भी बुलाना, उनको क्या बोलो, उनको बुलाना कि देखो ये सबसे बड़ी नगर में अभी उत्सव होने जा रहा है, महाराज ने वार्षिक उत्सव करने जा रहे हैं, तो इसलिए आप सभी को निमंत्रण है, खाली हाथ नहीं, सब आपने भेंट लेकर गाना, दूध दही माखन घी जो भी परिमाण में घी ले, सब भेंट लेकर गाना, और फेस्टिवल में भाग लेना, सबका गेस्ट हाउस बुक्ड है, बोलो कोई चिंता की बात नहीं, रहना खाना सब व्यवस्था है, और सब परिवार सबको निमंत्रण है। तो बोले चलो, इसे निमंत्रण करेगा तो सर राजी हो जाएंगे आने के लिए, वो ऐसा करो जल्दी से जाना, ऐसा करो फिर बुलाया, ऐसा करो मेरे गाड़ी ले लो, आपके गाड़ी पुराना होगा, मेरे गाड़ी ले लेना। अकुर जी छोड़ा हंसने लगे, नहीं आपके गाड़ी, बोला अच्छा पसंद नहीं, नया गाड़ी देता हूँ, बिल्कुल नया अनयूज्ड कार था, ब्रांड न्यू, बोले इसको लेकर जाना, अकुर जी खुश हो गया, बोले पता नहीं कितने प्रेम करता है मुझे। अकुर जब उनके गाड़ी दे रहा था, अकुर जी सोचे देखो मैं संसार के त्रिलोकाधिपति भगवान को लेकर आऊंगा, उनके प्रसाद को, उनके कार में कोई नया गाड़ी होता उनको लाता, तो भगवान की इच्छा से नया कार ही दिया। बोले ऐसे वेगवान अश्व देता हूं, ऐसे गाड़ी की हाई स्पीड में चलने वाला। तो अकुर जी बोले ठीक है, तो उपवास व्रत है, काली सुबह चलना, हाँ बिल्कुल बड़ी भोर में, एक बार 4 बजे गाड़ी आपका पार्क करेगा आपके गेट के सामने, यहां आना नहीं पड़ेगा, वहीं से चल दे, ठीक है आपका आज्ञा के पालन करूंगा। तो रात भर कंस को नींद ही नहीं आया, प्लान कर रहा था, अकुर जी तो राजी हो गए, करेगा कुछ गड़बड़ी तो नहीं करेगा, कैसे करेगा, आ तो जाएगा, ज्यादा से पता चल जाएगा मथुरा है कितना दूर, ब्रज है कितना दूर, आ जाएगा ऐसे ऐसे करके बड़े चिंतित में था। ओ भी भजन करके रात बिताए, तो हरिभक्त थे ही अकुर जी। सुबह 4 बजे ड्राइवर लेकर गाड़ी पहुंचे, देहान बजाया, साहब चलना है, राजा ने भेजे गाड़ी, ठाकुर जी नहा धो करके मंगल आरती समय से निकल पड़े। निकले, निकलते ही गाड़ी में मन में सोच रहे हैं, मैं जाऊंगा वो मेरे साथ आएंगे, मुझे मिलेंगे ही सही। अरे इतने साल तक कंस ने लगभग प्रतिदिन किसी न किसी को भेज रहा था अपने आदमी को, उनका जो दशा हुआ मेरा इसी दशा तो नहीं होगा, मैं बचकर आऊंगा क्या? नहीं, अभी तक तो कोई बचकर आया नहीं, क्या होगा भाई? बोला अगर मुझे मान लेंगे कि मैं उनका जन्म जन्म के पूजक हूँ, उनके भक्त हूँ, अगर वो पहचान लेंगे अपने परिवार के आदमी हूँ, उनके स्वजन हूँ, मान मिलेंगे, लेकिन फिर भी उनके स्वजन होते हुए, भक्त होते हुए ये खलनायक, ये कपटी कंस के, राक्षस कंस के मैं सेवा कर रहा हूँ ना, उनके नौकरी कर रहा हूँ, तो इसे कुकर्म के कारण मुझे, मेरे ऊपर रुष्ट नहीं होंगे, मुझे गुस्सा होकर बोले गेट आउट, मेरे से दर्शन नहीं दे सकते, मेरे से बात करेंगे, मेरे आमंत्रण की रक्षा करेंगे, तो मैं जाऊं या ना जाऊं? कंस का दूत बनकर जाना तो भारी काम है, बहुत खराब सोचेंगे वो लोग, क्या करूं, जाऊं ना जाऊं? मन में होता है अरे भाई जीवन पर्यंत मैं उनको आराधना करता आया, मेरे प्राण के आराध्य ईश्वर तो वही है, जानता था वही प्रकट होंगे हमारे परिवार में, प्रकट भी हुए, लेकिन जन्म से अभी तक मैं देख ही नहीं पाया, मेरे चक्षु सफल नहीं हो पाया, उनके दर्शन नहीं कर पाया, बहुत व्याकुल हो रहा हूं, लेकिन ब्रज तो ज्यादा दूर भी नहीं है, जाके दर्शन करके आ जाता, लेकिन यही राक्षस के भय से तो जा नहीं पाता हूं, उसी का डर में मैं एक आधा घंटा के लिए भी जाकर उनको देख करके आ जाऊं इतने नहीं बन पाता, खबर मिलेगा तो बड़ा एक्शन लेगा। लेकिन प्रभु आपको विशेष धन्यवाद, मुझे आप रुष्ट हो, आप स्वीकार करें या ना करें, लेकिन ये कैसा आपके उपाय है कि स्वयं कंस मुझे बुला करके अपनी नए गाड़ी दे करके भेज रहा है आपके पास, आप आए और ना आए, मुझे ऊपर रुष्ट हो, मुझे कष्ट हो या मुझे स्वीकार करे, लेकिन आपको तो मैं दर्शन करूंगा, भले पास में हो दूर से हूं, अब तो कोई नहीं, स्वयं राजा भेज रहा है। ऐसे मन में अनेक प्रकार विचार करते हुए आगे बढ़ते जाते जाते रास्ता में सोच रहा है कि सच में क्या परमेश्वर का मुझे दर्शन होगा, मैं इनसा अभी तक मैं कौन सा ऐसा जाप तप व्रत धान पुण्य योग किया हूं? अरे जन्म जन्म तक भजन साधन जप आदि करके बड़े बड़े जोगिंद्र मुनिंद्र देवेंद्र भी बड़े कठिनाई से उनका दर्शन नहीं पा पाते हैं, मैं क्या किया था? अभी तक तो इसे कोई पुण्य नहीं किया, उसी के काम कर रहा हूं जो महाराक्षस है, महा अत्याचारी पापी है, उनके यहां काम करता हूं, तो किस पुण्य के बल से मुझे दर्शन होगा, प्रभु के चरण दर्शन होगा? ये तो नहीं हो सकता, मैं आशा नहीं करता हूं, लेकिन कंस जो भेजा है विशेष आमंत्रण दे करके, तो दोनों तरफ से सोचते सोचते और बहुत मनोरथ कर रहा है, लेकिन जो भी हो मैं तो जा ही रहा हूं, अगर जाऊंगा तो अवश्य वो मेरे प्रभु है, वो तो अंतर्जामी है, वो बाहर से थोड़ी देखते हैं, मेरे अंतर जानते हैं, जन्म जन्म में मैं जब उनका ही आराधना किया हूं, उनके भजन किया हूं, उनके सेवा करने के संकल्प ले रहा हूं, आज उनका दर्शन करने जा रहा हूं, अवश्य मुझे स्वीकार करेंगे, मैं जब उनके दंडवत प्रणाम करूंगा, मुझे उठाकर आलिंगन करेंगे, बड़े भाई को भी आलिंगन प्रणाम करूंगा, वो भी मुझे उठाएंगे, अपने गले लगाएंगे, मुझे अपने चाचाश्री कहेंगे, मुझे आतिथ्य करेंगे, सच में क्या करेंगे ऐसा? ऐसे अप एंड डाउन में चल रहा था, मथुरा से निकलते ही इतने हाई स्पीड कार था, लेकिन गाड़ी की इतनी बढ़िया गाड़ी, इतने वेगवान अश्व सब होने से क्या गाड़ी चलाए तभी था ना, एक्सीलेटर में पैर रखता ही नहीं, स्टेयरिंग पकड़कर बैठे कर ये इसी भोला की तरह देख रहा है, चलूं नहीं चलूं, जाऊं कोई स्पीड पता नहीं क्या हो रहा है। अरे जैसे धीरे धीरे ये घोड़े ऐसे ट्रेंड घोड़े थे, कम से कम चल रहे थे धीरे धीरे, जैसे आगे बढ़ा मथुरा के बॉर्डर पर आया तो वहां देखा कि बहुत सारे गायों का पदचिन्ह है, जानता था कि मेरे प्रभु तो गोपालक हैं। बोला इस गायों को मेरे प्रभु ने पालन कर रहे हैं, उनको देखा। उस पदचिन्ह को देखते देखते उसका बीच में एक छोटे छोटे पदचिन्ह दिखाई पड़ा, असामान्य, कोई मनुष्य का तो होगा ही नहीं। पद्म, वज्र, अंकुश, ध्वज सब चिन्ह था उसमें, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। क्योंकि भगवान के पदचिन्ह को धरती माता अपने अंक से कभी मिटाना नहीं चाहता था, क्योंकि वही तो उनका सौभाग्य है। धरती देवी ने भगवान के, भगवान भी नंगे पैर में चलते थे, उनके चरण चिन्ह को धारण करके आपने सौभाग्य श्री को वैकुंठ तक को देखा था, बोला देखो मेरे बराबर होंगे, तेरे ऊपर चलते हैं तो चप्पल पहनकर चलते हैं, तेरा है सौभाग्य मिला, मेरे देखो नंगे पैर पूरा स्टाम्प लगा हुआ मेरे ऊपर, खुलकर स्टाम्प दिखा रहे, सबको दिखा रहे अपने सौभाग्य श्री को, एडवर्टाइज कर रहा है। सही बात है, बाकी सब जगह में तो पदत्राण धारण करके चलते हैं, यहां बिल्कुल खाली पैर में। तो इसलिए धरती देवी बड़े जत्न से भगवत चरण को अपने भूषण अलंकार करके मिटने नहीं देती, रखती है। तो उसको अक्रूर जी ने देखे, देख करके पहचान लिया, कैसे नहीं पहचानेंगे, तुरंत कूद पड़े गाड़ी से नीचे, प्रणाम किए, उस रज को ला करके सर में लगाए, बोले केवल इतना? अरे मैं तो धन्यात धन्य होना हो जाना चाहिए, मेरे प्रभु के चरण धू लिए, तो दंडवत करके प्रणाम किया, लोटपोट हुआ, सारे रज उठाकर सारे शरीर में मला लगाया। जैसे भगवत चरण स्पर्श रज ला करके शरीर में लगाया, कोई भक्तों के चरण धूलि लगाने से जब शरीर पवित्र निर्मल हो जाता है, पाप शून्य हो जाता है, तो साक्षात भगवान के चरण रज कोई शरीर में भक्ति में कोई लगाए तो जो होना था, तुरंत शरीर आपाद मस्तक पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया, आंख से धार धार आंसू बहने लगा, पागल की तरह रो रो करके हा कृष्ण हे प्राणनाथ कह करके बोलने लगे, वही रोने लगे, वही भाव विभोर होने लगे, वो गाड़ी क्या चले, वही तो वही रह जाता जंगल में, ब्रज पहुंचता नहीं, अगर आगे फिर दूसरा पैर देखा पदचिन्ह, फिर आगे बढ़ा, फिर रोया, फिर आगे फिर बढ़ा, ऐसे पदचिन्ह को फॉलो करते करते गाड़ी भी नहीं चला, पैदल में चलते आया, गाड़ी उनके पीछे पीछे खाली घोड़े खाली रथ को लेकर आए, वो तो ऐसे आया। सुबह निकला था 4 बजे, बहुत ज्यादा से ज्यादा 12 किलोमीटर होगा, है ना, नहीं वो इतने हाई स्पीड कार था कि 150 स्पीड में चल सकता है घंटा, हाँ 150 किलोमीटर पर आवर, लेकिन 12 किलोमीटर जाना था उनको। सुबह 4 बजे निकला था, बिल्कुल रोड खाली था, नो ट्रैफिक, ट्रैफिक ऐसे नहीं होता, हाँ निकला था, लेकिन अब पहुंचा जाकर के बालू में शाम को 6 बजे, बेचारा पारण भी नहीं किया था, एकादशी फास्टिंग था, सुबह पारण के समय पारण करना था, लेकिन पारण क्या करेगा, कंस ने गाड़ी भेज दिया था, गाड़ी में गए हो तो पारण फंस भूल गए, खिधा पिपासा भूल करके रास्ता में लोट पोट हो करके धूली धूसरित हो करके पूरे शरीर रोमांचित हो करके सारे अष्ट सात्विक विकार के साथ बड़े मनोरथ मन में बहुत चिंतन आशा करते करते कहां गए हो, श्यामानंद कहां चला गया, कहां चला जाता तुम्हें, तो मनोरथ करते करते चल रहा है मन में, ये बहुत बड़े विचार चल रहा है कि ये कुत्सित शरीर जो एक खलनायक कंस का सेवा करता रहा, इतने मेरा कैसे कुकर्म, ऐसे दुष्कर्म के कारण से मैं एक पापी अत्याचारी कंस का सेवक बना, क्या मुझे वास्तविक उन्होंने कृतार्थ करेंगे, इस विचार के साथ शाम तक पहुंच रहा है मन में जो विचार है। ए जल्दी शुरू,
म मन हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण
अक्रूर जी ने अपने अंदर की आशा आतुरता उसके साथ अनुताप और पश्चाताप इससे मिली जुली प्रतिक्रिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सूर्यास्त के समय लगभग जब कृष्ण बलराम गोष्ठ से आ चुके हैं और गोदहन करके अपने भवन की ओर जा रहे हैं, तभी अक्रूर प्रवेश कर रहे थे ब्रज में, तब उनको देखे। दोनों कृष्ण और बलराम जब गोष्ठ से दहन कार्य के बाद में गोदहन के बाद में जा रहे थे तो उनको मिले। आपने आराध्य देव को चाहे भले कैसे भी हो तो पहचान ही तो लेंगे, उनके रूप गुण चाली तो जाकर के तुरंत पहली बार देख रहे हैं जीवन में, अभी देखे नहीं थे, जाकर प्रणाम किए। प्रणाम किए वो भी अनसुने अनदेखी, तुरंत आपने श्रीहस्त कमल से उठा करके गले में लगाए। अक्रूर जी भगवत करस्पर्श पा करके और पुलकित हुए, शिशक शिशक कर रोने लगे। कृष्ण के घुंघराले बाल उनके आंसू के धारा से भीगने लगा, तो उनसे छोड़ करके पास में बलराम थे, उनको प्रणाम किए। बलराम जी ने उठाकर आलिंगन किए और उनको हाथ पकड़ करके घर में ले गए। ले करके स्वयं ब्रजपति नंद बाबा आ करके उनको मिले और उनका इस प्रकार आतिथ्य किया गया कि अक्रूर जी तो सोचे भी नहीं थे। उनको बोलने के लिए भूल गए, भाई मैं कोई अतिथि नहीं हूं, मैं दूत हूं, कंस राजा का मैसेंजर हूं, कोई अच्छे मैसेज भी निकल नहीं आया हूं, बहुत बड़े कुट कपट मैसेज है। लेकिन वो कोई पूछे ही नहीं, वो लोग ना वो बोल पाए ना पूछ पाए। ऐसे सत्कार और आतिथ्य कोई देवता कुछ नहीं होगा ऐसे किए। अरे बहुत थके होंगे, ये कहे होंगे, उनको सम्मान की पूजा किया गया, भेंट किया गया, विशेष प्रकार के भोजन दिया गया। वो जानते थे बेचारे खाए नहीं, पारायण अब तक नहीं किए, द्वादशी के शाम होने लगा, रात होने लगा। विशिष्ट प्रकार के चर्ब चेष्य लई हपैया चतुर्विध भोजन से उनको आप्यायित किया गया। कई प्रकार के उनके साथ बातचीत करने के बाद आप थक गए होंगे और गाड़ी पार कर दिए थे, उनको विश्राम कक्ष में ले गए। और अक्रूर जी थके तो थे ही, आपने बिस्तर में जैसे लेट गए विश्राम के लिए, अब देख रहे हैं कि दोनों भाई दोनों साइड में चरण के दोनों तरफ से बैठ गए, एक एक पैर को अपने अपने गोद में ले चुके हैं, एक तरफ से कृष्ण एक तरफ से बलराम, अकुर जी के पद सम्मान करने लगे। अकुर जी देखे, अरे आप मेरे आराध्य देव, क्या लेकिन क्या कर सकते हैं, उनको वारण भी नहीं कर सकते, वैसे भगवान है उनको मना भी नहीं कर सकते, वही उनके जन्म जन्म के पूजित आराध्य प्रभु हैं, आज वो सोते समय में उनके चरण को अपने गोद में लेकर के मसाज कर रहे हैं, ऐसे प्रभु हैं। तो देख करके इसे रह गए, तो जब वो संकोच महसूस किए तो कृष्ण बोले, चाचा श्री आप हमारे पितृव्य है, हमारे सम्मान या पूज्य है, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम तो आपके छोटे हैं, तो हमारा तो कर्तव्य है आपकी सेवा करना, आप थक रहे हैं, आप संकोच क्यों कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए मथुरा में क्या खबर है। तब पूछने लगे, आप कैसे आए, आने का कारण क्या है। ये नहीं पूछे कि भाई आप ही अक्रूर है कि नहीं, हुआ रहे हो कुछ नहीं पूछे, अभी तक कुछ नहीं, इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, अपने आप इंट्रोडक्शन हो गया। तो जब पूछे तो अक्रूर जी तो, और जब उनका सब कुछ लूट चुके हैं उनको देख करके, तब क्या कंस बता था, केवल ये नहीं बताना, ये बात बताना कि आपको आना है फेस्टिवल के लिए, विशेष इन्विटेशन। लेकिन वो इन्विटेशन के बाद तो नहीं बोला, कंस के सारे षड्यंत्र को खोल कर बता दिए, खोल करके बता दिए, बिल्कुल एक पॉइंट भी बाकी नहीं रखे। ऐसे देवर्षि नारद जाकर बोले, ऐसे ऐसे हुआ, आपके पिताजी को मारने चला था, आप जेल में डाला, ये किया, ऐसे ऐसे प्लान किया है। दोनों भाई हंसने लगे सुनकर, हंसते हंसते बोले, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, अब लेकिन आपको कंसब इसकी कहकर के, नहीं नहीं मुझे तो बहुत वारण किया था, इस बात को कभी नहीं कहना। फिर क्या कहने के लिए बोला था ना, बोलता कि विशेष वार्षिक उत्सव इस बार हो रहा है और इसके लिए बहुत भव्य सजावट, बहुत बड़े भंडारा सब का आयोजन किया जा रहा है, सभी को आमंत्रण किया गया, तो सारे गोप और जितने गोप बालक सब अपने अपने यथेष्ट परिमाण में भेंट लेकर आए, और आप दोनों को तो स्पेशल गाड़ी भेजा आप दोनों को लेने के लिए, VIP पास है, आप दोनों जाएंगे, बाकी सबके जनरल गैलरी में जाएंगे, आप लोग का स्पेशल ट्रीटमेंट होगा। तो लेकिन मैं क्या कहूँ, नंद बाबा की बात कैसे कहूँ, मैंने तो शर्म लग रहा है। तो कोई बात नहीं, आप विश्राम कीजिए, हम बोल देंगे बाबा जी को, पिताजी को हम बोल देंगे। तो दोनों बालक अक्रूर जी को सुला करके चले गए, जा करके पिताजी को बोले कि अक्रूर जी के आने का अभिप्राय पता है पिताजी, क्या ना मामा कंस ने भेजे हैं और विशेष आमंत्रण दे करके, उनका बहुत बड़े उत्सव होने जा रहा है और सभी को निमंत्रण है, हम दोनों तो स्पेशल जाएंगे, गाड़ी लेकर आए हैं हमको लेने के लिए, और कल सुबह हमको जाना ही है, बाकी आप सभी भी भेंट लेकर जाने के लिए और खबर भेजें। तो इस बात को सुन करके नंद बाबा ने तुरंत गांव में मीटिंग बुलाया, बोला कि ऐसे कंस राजा ने मैसेज भेजा है और वार्षिक उत्सव है, धनुर्यज्ञ है, मल्ल युद्ध है, सब बड़े इवेंट है, अब जाना है, सब भेंट लेकर के, हमारा भेंट किया, दही दूध घी माखन इतना लेना है, तो तैयार कर कल सुबह निकलना है। दूसरी बात क्या, आप लेट में चले जाते, दोपहर में जाते, ऐसी बात है, सुबह क्यों निकले, कल आज रात रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि कल सुबह मेरे दोनों बच्चे जाएंगे, लेकर जाएगा कंस गाड़ी भेजा, और वो जाएंगे तो आप तो जानते ही हैं, तो कम से कम हम छोड़ कैसे जाएंगे। तो सारे जितने पुरुष गोप थे, जितने ग्वाल वाल थे, सारे तैयार हो गए, रात रात सब तैयार करने लगे, भेंट सामग्री सब अपना अपने छकड़ा सजाने लगे, बुलक कार्ट में लोड करने लगे, और सुबह उठते ही स्नान टान करके तैयार हो गए चलने के लिए। आपसे भेंट देना उनका उद्देश्य नहीं था, उनका उद्देश्य क्या था कि हमारे प्राणधन जा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा, भेंट के साथ साथ अपने अस्त्र शस्त्र पजा करके ले चले थे, बोले जरूरत पड़े तो सामना सामने मुक्काबिड़ी हो जाए, भले हमारा प्राण चले जाए लेकिन कृष्ण के बिना वापस नहीं आएंगे, कैसे हो सकता है, इसलिए वो चल पड़े थे सर, कोई रहे नहीं, केवल स्त्रियां रह गई थी, वो जा नहीं सकती, बाकी तो सब तैयार हो गए थे चलने के लिए, सुबह निकल ही पड़े। अब सारा रात अकरुक नींद नहीं हो रहा है, लाइट बंद कर दिए थे हैं, फिर भी नींद नहीं हो रहा है। अकरुक जी सोच रहे हैं कैसे बात है, ये दोनों बालक में कितने खतरनाक मैसेज उनको दिया कि कंस ने उनको मारने के लिए कैसे कपट मंत्रणा किया, क्या लेकिन इसे सुनकर अनसुनी उपेक्षा कर दी, हंस दिए, कोई बात नहीं जैसे। अरे मैं तो सोच रहा था उनको इसलिए बताया कि कुछ उपाय करे, कोई सैनिक लेकर कोई भाग जाए, कहीं कोई छिप जाए, कुछ करे, भले मरे ऊपर जो एक्शन लगा लगा लेकिन उनका कुछ हो जाए बचे, लेकिन ये तो अनसुनी कर दिए। और जाकर पिताजी को बोले तैयारी चल पड़ने के लिए, कोई चिंता की बात नहीं। अरे और ये सारे सभी लोग भी तैयार हो गए जाने के लिए, मैं कितने दुष्ट हूं, मेरे प्रभु को मैंने खुद अपने गाड़ी में बैठा कर ले जाऊंगा महाकाल में, कितने सलोने नव किशोर कोमल बालक हैं, उन दोनों को महाकाल के मुख विपत्ति के मुख में मैं खुद ले जाता हूं, ये कितने दुष्ट बात है, कैसे मैं करूंगा उसको। इसी चिंता में उनका रात बीता। सुबह उठ करके जमुना में स्नान किए, संध्या करके तैयार हुए। जैसे रात भर पुरुषों लोगों का सब भेंट सामग्री अस्त्र शस्त्र में तैयारी था, खबर मिल गया सारे गोपियों को। उन लोग को खबर मिला कि कंस ने गाड़ी भेजा है कृष्ण बलराम को ले जाने के लिए, तो वो चिंतित हो गए, बोली कैसे, कोई रोकते नहीं उनको, कोई पूछते भी नहीं। और आकर देखे कि नंद बाबा भी तैयार हो गए, बाकी सारे गोप सारे ग्वाले भी तैयार हो गए। बोले ये क्या दिमाग खराब हो गया क्या उनका, क्या कर रहे हैं, अरे कंस कब उनके इतने मित्र बन गया, इतने हितैषी बन गया मामा जी, वो कैसे तैयार होंगे, ये क्या सब आत्महत्या करने जा रहे हैं क्या। आत्महत्या किस लिए करने जा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कृष्ण तो जाएंगे, क्योंकि जाने के बाद फिर आएंगे या नहीं, और कृष्ण जब नहीं आएंगे वो क्या अपना शरीर धारण कर सकते हैं, प्राण छूट जाएगा उन लोग का, ये इसको समझते क्यों नहीं है। और कृष्ण क्यों नहीं आएंगे, भले पुरुष लोग का कुछ मन में और विचार है, नारियां क्या सोचते हैं कृष्ण क्यों नहीं आएंगे, उनका मन में विचार है कि हम लोग तो गवार लड़की हैं, अच्छा पहनना अच्छा बोलना भी जानते नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं, इंग्लिश ही बोल नहीं सकते हैं, और ड्रेस भी अच्छा जीन पैंट शर्ट पहन नहीं सकते हैं, ये सब कर नहीं सकते, तो वो जाएंगे अभी सिटी में, सिटी में जाएंगे, सिटी का जो लड़की हैं उनका जो बोली चाली उनका ड्रेस उनको देखने के बाद हमको पूछेंगे, जा गए वो भी चर्च फिर तो नहीं आएंगे। इसीलिए उनका बड़ा दुख, विधाता को बड़े दोषी देते हैं कि हरे विधाता हरे दैव तू ऐसा मूर्खता काम क्यों करता है, विधाता मैं क्या मूर्खता काम क्यों ना, अरे भाई इतने सुंदर मुख कमल भगवान के कृष्ण के, जो इतने सुंदर चेहरा इतने सुंदर घुंघराले बाल उठे हुए नाक, उनके पूरे कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभंग जैसे मुखचंद्र को हमको क्यों दिखाया, एक बार दिखा करके थोड़े दिन में फिर हमारा भी कामना पूर्ति नहीं हुआ है, हमसे फिर छुड़ा लेता है, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं भाई, नहीं दिखाता नहीं दिखाता, एक बार सामने पेश किया क्यों किया, यही गलती जब किया तो फिर ले क्यों जा रहे हैं, फिर थोड़े दिन तो हम देखने दो, अभी हम बिल्कुल अतृप्त हैं कैसे ले जाते हैं। ठीक है, जब हमारे सामने भेंट किया कृष्ण को तो हम समझ गए, पूरे सृष्टि में जितने कड़ा प्राचुर्य आपके जितने पारदर्शिता है सारे इस शरीर में लगा दिया तूने, जितने प्रकार के आपका गुण था ठाण था सभी लगा करके उसको बनाया कंप्लीट, इतने सुंदर जो बनाया तूने, लेकिन अभी हम पूरे तृप्त होकर उसको देख भी नहीं पाए, हमसे भी छोड़ लेता है, ऐसा क्यों करता है। इस प्रकार विधाता को गाली दिए, अपने को भाग्य को कोसने लगे, ये क्या कर रहे हैं, कोई रोक भी नहीं रहे हैं, ये उनके साथी लोग भी नहीं रुक रहे हैं, बड़े बूढ़े भी नहीं रुक रहे हैं, क्या हो रहा है सब, जाके गोपियों को बड़े वृद्ध गोपियों को पूछे, बोले चार दिन के लिए तो जा रहे हैं, मामा जी ने बुलाए फेस्टिवल के लिए आ जाएंगे। अरे आप भी ऐसे सोच रहे हैं, क्योंकि उनका हृदय की बात और कोई नहीं जान पा रहा। सुबह हुआ जैसे रथ में कृष्ण बलराम पहले से बैठ गए, जाकर कुर्जी बैठने से पहले, चलिए चाचा जी चल पड़े, नंद बाबा अगर अभी तैयार थे पहले वो बैलगाड़ी हांक दी, वो चले, सारे गोपियां आए आकर पीछे खड़े हैं, बोले ये निष्ठुर कृष्ण, हम तो पूछा तक नहीं, बैठ गया गाड़ी में जाकर के सुबह से, थोड़ा हमको टाटा बाबा भी करता कुछ बोलता, बैठ गया जाकर के, अब वो गाड़ी चल दिया। बोले अब क्या करें, कोई रोकते भी नहीं, वो तो चले जा रहे हैं, चलो दौड़ो। अरे रोड में, मेन रोड में कैसे जाकर रोकेंगे, शर्म लगेगा, हम सब शादी से देखे हैं, कोई शादी करने वाले हैं, सब लड़के कैसे जाएंगे। अरे छोड़ो, लाश शर्म किसके लिए है, कृष्ण चले जाएंगे तभी मर जाएंगे, तो मरते समय लाश शर्म क्या रखना है, चलो भागो। दौड़े, दौड़ करके जा करके रथ का जो चक्का था, सारे चक्का के जो स्पोक वगैरह सब अखा चक्का सब में लिपट गए, पूरा जाम, रोड जाम, अखा जाम, चक्का जाम, सब जाम कर दिया। अकुर जी बोले लो अब क्या करें, रास्ता बंद। अब अकुर जी बोले कैसे करूं, चलिए कैसे चलूं, सामने से सोए हैं भाई, एक दो होता तो कोई चलता, गाड़ी चढ़ा के चले जाते, राजा आदेश है, कोई केस नहीं होगा, लेकिन ये तो हजारों संख्या में। अब कृष्ण बलराम देखे, बोले अब कुछ करो, ये तो बंद कर दिया रास्ता। तो कृष्ण बोले आप लोग छोड़ दीजिए रास्ता, मैं मथुरा जाऊंगा। जैसे कृष्ण के मुख से ये वचन सुने, सारे गोपियों का ठक 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 संज्ञा ही होकर गिर पड़े। बोले आप जा रहे हैं मथुरा, बस ये शब्द उनको सहन नहीं हुआ, असह्य हो गया, संज्ञा ही होकर गिर पड़े। तो अकुर जी तो और रोने लगे, ये क्या हो गया, अरे जीवित थे कम समझा बुझा कर रास्ता से हटा करके स्ट्राइक कल अप करके चले जाते, ये तो समर गए एक साथ में थोक होलसेल में, महाविपत्ति हो रहा है। तब फिर कृष्ण बोले मैं वापस आ जाऊंगा, मैं जल्दी वापस आऊंगा। जिस एक शब्द आया तो फिर जग गए, बस बोले अभी साइड करके रथ निकल लो। बड़े मुश्किल से इधर उधर साइड करके निकले गोपी लोग, ये जो शब्द उनके प्राण का आधार क्या शब्द था, मैं वापस आऊंगा, यही आशा रूपी प्राण को, यही शब्द को धारण करके जीवित रहे, वही पड़े रहे मूर्तिवत। रथ चला गया, उसके पीछे देखते ही जे जब तक दृष्टि पथ में था, उसके पीछे धूल उड़ता रहा, उसको देखते रहे, रथ चला गया और दिखाई नहीं पड़ा चक्षु के अंतराल में, वही पुतली के भांति पड़े रहे। कैसे कैसे घर वाले आकर उठा करके लिए, मूर्छिता होकर पड़े थे। इस दशा गोपियों की था, वो तो चले गए। इधर मथुरा का क्या हाल है, कंस जब से अकुर जी को भेजा था ये महा षड्यंत्र करने के बाद, तब से उनको भी तो खान पान के शुद्धि नहीं है। मन में सोच रहा है मैं किसी को भेजा था, वो तो गया और मैसेज आया कि मर्डर, लेकिन ये अक्रूर गया, पता नहीं बहुत हाई स्पीड वाला कार दिया और सुबह 4 बजे निकला, अभी तक पता नहीं आ नहीं रहा क्या हो रहा है। हर घड़ी में आकर घड़ी भी देखता है, पूछता है मैसेंजर को, ए कोई गाड़ी आया मथुरा से, कोई आया अक्रूर देखा कोई, सर नहीं आया, कोई रथ आने का कोई सूचना नहीं। और जितने देर होते गया इतने उनका मन में विचार आने लगा, सोचता है क्या अक्रूर बदमाश क्या बोल दिया ना क्या जाकर के मेरे षडयंत्र से, अगर मेरे इच्छा उनको बता दिया हो तो भागे होंगे। अच्छा बदमाश अक्रूर मेरे साथ धोखा क्या, हाँ उनके परिवार को मार दूंगा, ऐसे विचार आता। फिर सोचता है नहीं नहीं अक्रूर नहीं बताया होगा, अक्रूर नहीं बताया होगा, वो लोग तो बहुत चतुर है, वो अगर अभिप्राय समझ लिए होंगे, समझ करके जो अभी तक जितने दूत भेजा हो सबको तो मारे, अक्रूर को अगर मार दिए होंगे, नहीं 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 अक्रूर बड़े धर्म प्राण है उसको तो नहीं मारे होंगे। तो क्या दोनों मिलकर जबरदस्ती अक्रूर को बांध करके लौट के कहीं चले गए ना क्या, नहीं आए विचार किए क्या, गोप लोग मिलकर के कोई षड्यंत्र कर नहीं आए, कई प्रकार के विचार मन में उठ रहा है और अपने आप को स्थित नहीं कर पा रहा है, लेकिन चाह करके ऐसा मन में इतना कल्पना कभी नहीं कर पाता कि अरे मूर्ख ये तेरे सारे षड्यंत्र को अच्छे तरह से जान करके सुन करके उपेक्षा करके आराम से आके पहुंच जाएंगे तेरे पास में, यही बात कभी सोच में नहीं आ रहा है उसका। अब तो पूरा रात तक आए नहीं अकुर जी, उस रात बीता, दूसरे दिन सुबह निकले थे, वो बार बार देख रहा था, और दोपहर को 12 बजे तक खबर आया कि अकुर जी आ रहे हैं, लेकिन रथ खाली आ रहा है, रथ खाली आ रहा है, क्या होगा नहीं आए, तो अकुर जी आए, महाराज को अभिवादन किए। कहाँ गए दोनों बालक? ना आए, आए कहाँ है ना? उनके सब गोप आदि सब गोप बालक सब आ चुके थे पहले, और आकर के मथुरा के आउटस्कर्ट में ही रुके हैं। आप पहले आ गए, ये बैलगाड़ी लेकर आए, आप कार लेकर आए, वो आगे आगे पहले आ गए, क्यों लेट हुआ? तो अकुर जी का लेट का कारण, अकुर जी बड़े मुश्किल से रात भगा कर ले गए थे, और वहीं से निकलते निकलते लेट हो गया था मथुरा से, वृंदावन से, नंद भवन बाबा से। तो रास्ता में मथुरा जमुना जी के पास जा करके बोले संध्या, मध्यान्ह संध्या कर लूँ? तो कृष्ण बोले ठीक है कर लो, स्नान ठान करके आ जाओ। तो जा करके जमुना जी में स्नान किए, वस्त्र उतार करके, जैसे डुबकी लगाया जमुना जी के अंदर, रथ है कि पेड़ के नीचे रख दिए थे, दोनों बालक बैठे थे, बोले आप दोनों ही बैठे हो, मुझे आके स्नान करके आता हूँ। हाँ चाचा जी जाइए। जाके पानी में डुबकी लगाए तो देखते हैं कि दोनों बालक पानी के अंदर है। बोले क्या, दोनों बड़े चप्पल, मैं उनको बोला रथ में बैठो, भाग कर आ गए क्या मेरे पीछे पीछे? अरे घोड़े जोते हुए थे, रथ ना चला जाए लेकर कहीं, नया गाड़ी है कहीं चला चला जाए। तो उठ करके देखे गाड़ी है कि नहीं, गाड़ी यथास्थान में है, तो दोनों बालक भी यथारूप में बैठे हुए हैं। बोले अरे मैं किसको देखा, वो दोनों तो बैठे हैं, कपड़ा भी गिला नहीं। फिर क्या हुआ, विस्मय भाव से फिर दोबारा डुबकी लगाए, दोबारा डुबकी लगाए तो जो देखे हाथ जोड़ करके स्तुति करना पड़ा, जो प्रभु ने उनको बुद्धि वृत्ति दिए थे पूरी कसर लगाकर स्तुति किए, जो देखे साक्षात सिद्ध चारण गंधर्व किन्नर सारे देवताओं हाथ जोड़ के स्तुति कर रहे हैं, साक्षात गर्भदक्ष अनंत साई विष्णु, सब देवता स्तुति कर रहे हैं, अनंत साई विष्णु स्वयं हैं शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, इसे महाविभूति भगवान के रूप दर्शन किए, दर्शन करके कृतकृत्य होकर स्तुति किए, स्तुति करके उठे ऊपर से, उठ करके बड़े गंभीर होकर गए। अपने मन में सोच रहे हैं कि प्रभु ने मुझे ये रूप इसलिए दिखाए कि मैं मूर्ख सोच रहा था कि मैं उनको लेकर जा रहा हूं, इतने सुंदर सुंदर, इतने सुंदर रूप उनका, इतने छोटे छोटे बालक, उनको लेकर जा रहा हूं महाविपत्ति के सामने, मरवा देगा उनको तो कंस मरवाएगा, इसके लिए तो प्लान है, मैं क्या करने जा रहा हूं, इतने आतुरता इतने कष्ट मेरे हृदय में हो रहा था, इसलिए पानी के अंदर नहाते नहाते मुझे ज्ञान दे दिए, मुझे आश्वास वाक्य दे दिए, इसी को दर्शन करके मेरा भय दूर हो गया, मेरा मोह दूर हो गया, मेरा सौभाग्य उदय हो गया, अब कोई मेरी चिंता नहीं। मन में सोच रहे हैं कि मैं तो सोच रहा था कंस बड़ा बली है, इंद्र भी डरता है उनको, महाबली है, इतने प्रभाव है उनका, इतने निष्ठुर है, और ये छोटे छोटे बालक क्या करेंगे, लेकिन अब मैं समझ आया हूं, अरे जो पलक झपकते ही करोड़ों ब्रह्मा के सृष्टि को पलक झपकते ही प्रलय कर सकते हैं, ये शक्ति जिसका है, ये क्षार कम से उनका सामने होता क्या है, ये तो मच्छर ही नहीं होगा उनके सामने, तो क्या डर करने का है। तो इसे सोच करके बड़े खुश होकर के आ रहे थे, गंभीर होकर के, तो जाके जैसे गाड़ी में बैठे कपड़ा बदल करके, तो कृष्ण पूछे चाचा जी बड़े चिंतित लग रहे हैं, क्या कोई आश्चर्य देखे क्या पानी के अंदर, कोई इसे कोई अचरज घटना हुआ क्या? अब नहाकर गए थे, बड़े सीरियस दिखते हैं, क्या बात है? तो अकुर जी बोल रहे हैं कि हाँ, जल में, स्थल में, आकाश में, ये तीनों में सबसे श्रेष्ठ जो आश्चर्य है वही तो तू ही हो, सारे आश्चर्य आप में हो, जब उसको देख लिया फिर आश्चर्य क्या है। फिर उन्होंने भी हंसने लगे, उन्होंने भी हंसने लगे, तो लेकर के गए, जो भी धीरे धीरे जाकर पहुंचे तो तब तक दोपहर हो चुका था, पहले से ऑलरेडी बैलगाड़ी लेकर के सारे ग्वाल बाल और गोप अपने भेंट सहित मथुरा के राजधानी के बाहर में जमुना किनारे एक आम्र उपवन में अपने पार्किंग करके बैठ चुके थे, बैठे थे अपेक्षा करते थे कि कहाँ गए बालक दो, अभी आए, आने से हम भोजन करेंगे, स्नान करेंगे, भोजन करेंगे, अपेक्षा कर रहे थे। उनके अपेक्षारत को देख करके उसी रास्ता पर जब अकुर जी निकल रहे थे, अकुर जी उनको बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, प्रभु मेरे घर में थोड़ा आना, मेरे घर में चरण रखना, प्लीज हमारे घर में थोड़ा आना, क्योंकि जो समझ लिए सारे, रिक्वेस्ट कर रहे थे। जैसे जैसे ये आम के बगीचा के पास निकले, वो दोनों बालक कूद पड़े रथ से, अकुर जी बोले मेरे घर में जाना था, हम बाद में चलेंगे, अब नहीं, अभी हमारे सारे लोग इधर ही हैं, हम आ जाएंगे। अब महाराज को बता देना मैं आ चुके हैं, आ जाएंगे उनके पास, कोई बात नहीं। तो कंस खाली रथ लेकर गए, तो कंस को जो पता चल गया कि वो आ गए, तो उनका हार्ट बीटिंग थोड़ा बढ़ गया, हृदय का धड़कन तेज हो गया। बहुत दबाने चाहा अपने भय को, दबाते हुए अपने आप को समझाते हुए बोला, बोला अरे मूर्ख, तू ही तो उनको बुलाया तेरे गाड़ी भेज करके, फिर डर क्यों रहा है? हाँ? तू ही बुलाया, वो तो नहीं आ रहे थे, तू उनको बुलाया, इतने प्लान कर बुलाया, फिर क्यों डर रहा है? क्यों डर रहा है? एक ही रात का तो बात है, काल तो सफाया कर देना है सदा के लिए, कल डर खत्म हो जाएगा, क्यों आज रात वेट कर? अपने आप को समझा रहा है, लेकिन फिर भी मन नहीं मान रहा है। तो क्या करेगा? भय से बचने के लिए अपने आप को बिजी रखना पड़ेगा। तो तुरंत गाड़ी निकला, चलना नगर परिदर्शन में निकल गया, क्योंकि देखना चाहता हूं कि सिटी सब ठीक से डेकोरेशन हुआ कि नहीं, सब अपना अपना काम हुआ कि नहीं। सारे बड़े बड़े हाई रोड में जाकर देखा, सारे नगर सज धज करके, धूल करके, अतर छिड़क करके सब रेडी हो रहा है। बड़े बड़े लोग सो काम में लगे हुए हैं, कई चंदवा, कई बंदनवार, कभी फूल की मालाएं लग रहा है, क्या क्या सब सजावट हो रहा है। तो यहां देखा, दो राउंड इधर घुमा, फिर दौड़ कर गया रंगशाला में, स्टेडियम ठीक से सजा कि नहीं। पूरे जिला के लोग आएंगे, पूरे जनपद के लोग आएंगे, कंपलसरी आना पड़ेगा सब, और ब्रजिम से भी लोग आएंगे, और भी बड़े बड़े वीआईपी गेस्ट सब आएंगे, अन्य अन्य राजा सब आएंगे, बहुत बड़े बड़े राजा को इन्वाइट किया गया। सबके गैलरी अलग अलग व्यवस्था है, वर्ण के हिसाब से, पोस्ट पोजिशन के हिसाब से विशेष व्यवस्था किया गया, बड़े सुंदर, कैसे बैठ करके सारे शो देख सकते हैं, सारे व्यवस्था। और पूर्व की दिशा में तो अपने लिए जो विशेष अति उच्च मंच बना है, जालीदार पर्दा टना गया है, बड़े सुंदर चंदवा लगाया गया है, इस प्रकार स्टेडियम की सजावट। उसके बीच में जो अखड़ा स्थली है, मल्ल अड्डा स्थली, वहां भी गया देखने के लिए। वहां मल्ल लोक ने बहुत परिश्रम करके जो अखड़ा उनका मल्ल ग्राउंड है, उसमें मिट्टी को बिल्कुल ग्राउंड करके, रोलर चला करके, उसमें गोबर फोबर और सब डाल करके, कई प्रकार के इतर सुगंधी छिड़क करके, बड़े सुगंधित मुलायम कोमल बना दिए थे, बिल्कुल बहुत पतला एक बार नरम बना दिए थे उसको। तो वहां गए तो जो उनके मल्ल का जो हेड था, अधिनायक कूट ने आया, प्रणाम किया, तो उनका पीठ में हाथ रखा, तैयार ना, बिल्कुल सतर्क रहना। हाँ महाराज, क्यों चिंता करते हैं, हमारे पास तो आए सही। तो वहां से निकला, निकल करके आया, लेकिन उनका हार्ट बीटिंग तो कमता नहीं है, बढ़ता जा रहा है। और इधर सारे मथुरा के नगरवासी, जब उनको पता चल गया था कि कंस ने गाड़ी दे करके अक्रूर को भेजा वसुदेव के दो बालकों को लाने के लिए, उसी समय से उनके मन में उत्सुकता बढ़ गया था, क्या वो सचमुच आएंगे? ये राक्षस उनको बुला रहा है, क्या करेगा उनका साथ? दूसरे, अरे क्या करेगा, पता नहीं क्या करेगा, अब तक क्या कर रहा था, जन्म से अब तक तो मरने के पीछे पड़ा था, अब क्या पूजा करेगा उनको, अब क्या करेगा, बुला करके सारे असुर को एक साथ झोंक देगा, अब क्या करेगा? नहीं, ऐसा उनको मार देगा क्या? ना देखो, ये पहले आते कि नहीं देखो, आते कि नहीं देखो करके खबर मिला कि आ ही चुके हैं, आ ही चुके हैं। खूब सुने थे, आज मथुरा नगर के हर हाट बाजार में, रास्ता में, घाट में, चौराहे में, सब जगह में एक ही चर्चा, एक ही चर्चा है। जैसे कोई इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच हो, फाइनल डे हो, जहां देखो तहां टीवी ऐसी चर्चा, तो उससे भी कई गुना ज्यादा, हर सिटी में, हर मुख में, बूढ़े बूढ़ी, बच्चे बच्चे, सब एक चर्चा। क्या विषय था? रामकृष्ण के विषय में, रामकृष्ण के विषय में चर्चा, ओ ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे गुण रूप में उनका चर्चा चल रहा था। जो कंस के पार्टी के लोग थे, उनके अनुगत, उनका भी चर्चा के विषय ही था। हाँ, थोड़ा सा फर्क था उनके चर्चा में, थोड़े निंदा की, अपशब्द की बात था, हाँ आने दो, देख लेंगे साले को, ऐसे भाव था, लेकिन वही चर्चा था उनके बारे में। तो लेकिन आपस में मिलीजुली प्रतिक्रिया सोच रहे हैं, जब सुनचे कि आ गए करके तो सारे नगरवासी बड़े व्याकुल उत्कंठा हो रहे हैं उनके दर्शन के लिए, अभी तक देखे नहीं, सुने थे खूब, जन्म से एक लीला, ऐसे अति मानवीय कार्य किया है उन्होंने, क्या क्या नहीं किया है, उस लीला को सुन करके मन में इतना उत्सुकता बढ़ चुका है उनके दर्शन के लिए, लेकिन कंस का भय तो है। कंस के भय इतने काम किया कि उनको अपने घर से इस जस्ट सिटी के बाहर जो उद्यान था वहां तक जाने नहीं दिया। अगर कंस की नजर में पड़ जाएगा एक्शन ले लेगा, तो अपने घर में बैठकर देख रहे थे आएंगे तो सही इसी रास्ते में तो आएंगे देखेंगे, तो अपने घर सजावटी करने लग गए थे। लेकिन ये जो भय और आतंक, बड़े बूढ़े को भले लगे, छोटे बालकों के ऊपर आतंक ज्यादा टिकता नहीं, उनको डरा दो घंटे भर फिर भूल जाएंगे। बालक लोग तो सुने कि हमारे बालक आ रहे हैं, जो बालक बालकपन में इतने इतने कर्म किए हैं वो भी तो सुने हैं, घर में से चर्चा हो रहा है। सुन करके जब उनको पता चला कि बालक आकर के सामने बगीचे में बैठे हैं, तो बालक लोग बड़ी संख्या में एक झुंड दौड़ पड़ा मथुरा से निकल करके, दौड़ करके जाकर के अमर उद्यान के पास सारे बालक पहुंच गए। पहुंच गए सही, ये तो भरे सिटी के पढ़े लिखे बालक हैं, अच्छे बालक, वो तो सारे गवार बालक हैं, ग्वाल बाल हैं, गाय रखने वाले, कोई क्लास में एडमिशन नहीं की, अवाओ एबीसीडी कुछ नहीं सीखे, तो गए। लेकिन थोड़ा सा शर्म लगा, थोड़ा संकोच फील करके कुछ फीट दूर में खड़े रहे, पंक्तिबद्ध होकर देख रहे थे, देख रहे थे उनके जो गांव के लड़के जो बालक हैं, क्या उनके सुंदरता है। अपने आप को देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं, बालक सो कंपेयर करते ना फटाफट, हम देखो कितने पढ़े हैं, कुर्ता पहने हैं, ये पहने हैं, अरे ये तो कुर्ता तक उनका है, किसी एक ने भी कुर्ता नहीं पहना, एक कछनी मार दिए हैं, सारे रंगे शरीर, ना जूता है ना कुर्ता है, कुछ नहीं है, और यही से चिकने तिचने दिखाई पड़ रहे हैं, इतने सुंदर सुंदर रूप उनका, उनको देख रहे थे कैसे सुंदर सुंदर बात कर रहे हैं, आपस में मिल करके हंस रहे हैं, और वो दो कुमार है, क्या रूप है उनका, देख रहे थे कैसे बात करते हैं। इतने में सब मिलने लगे और बोल रहे कि दोपहर हो गया, भोजन करेंगे, स्नान करते हैं। सब मिलकर के गए जमुना जी में स्नान करने, दौड़ के गए पीछे कैसे स्नान करते हैं, जाकर देखे ना कोई टावल है, ना कोई शैंपू है, ना साबुन है, कुछ नहीं, सीधा कपड़ा उतर ठपाठप कूद गए जमुना पानी में, कूदे खूब इसे उधर, बस मजा करके नहाए, नहा करके फागुन महीना है ना, जमुना के पानी थोड़ा ठंडा, ज्यादा समय नहीं खेल पाएंगे, उठ करके आए, ना कोई पूछना है कुछ करना, फटाफट अपना कचनी पहन लिए, बस तैयार आ गए, ना कोई तिलक पटा ड्रेसिंग पेंटिंग कुछ नहीं। आप देख करके आए, आ करके बोले भोजन करेंगे, भोजन क्या को बनाते थोड़ी, अपने गांव से लोड करके लाए थे सारे, अब सब निकाले, ब्रज की रोटी छाछ मक्खन हो तो सब देखे, हाथ के बनाए हुआ चीज निकाल करके गोल राउंड होकर बैठ गए जो खाने बटी। ये दोनों बालक को तो देखो, सबको अपने हाथ से खिला रहे हैं, जा जा करके इतने हंसी कर रहे हैं, खुद भी आनंद ले रहे हैं, सबको आनंद कर रहे हैं, वो बालक देख देख कर मथुरावासी तो उनका कहना जाए। और जब उनको पसंद होता था, बालक है ना चंचल, दौड़ कर आ जाते थे अपने घर में आकर बोलते, देखा मैंने इसे देखा, ऐसे ना है, ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वो जो छोटा कुमार है कितना चंचल है, बड़े तो थोड़ा गंभीर है, सारे मैसेज घर वालों को आके मिल रहा है, पूरा मीडिया चल रहा है, उनको कौन रोके। जैसे भोजन लीला पूरा हुआ, तब उन्होंने सब खा लिया, बोले अब तो विश्राम करो, तब उठ करके कन्हाई ने बोला, बाबा अब चांस नहीं मिलेगा, हम विश्राम क्या करेंगे, हम विश्राम नहीं करते ना, क्या करेंगे, अब पास में आ गए, थोड़ा सिटी देख करके आते ना, घूम के आते, थोड़ा शाम अभी बाकी है टाइम, थोड़ा नगर दर्शन करके आते हैं। जैसे प्रस्ताव दिए कृष्ण ने, तो नंद बाबा बोले, तो क्या मैं आपके साथ चलूं ना, किसी को भेजूंगा, नहीं 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 नहीं, दाऊ साथ में फिर आप क्यों जाएंगे। तो उपनंद बोले, देखो बच्चे हैं, कोई बड़े बूढ़े जाना पसंद नहीं करते, उनको जाने दो ना। बोले हम इतने सारे हैं, सारे साथ में जाएंगे क्या, हम हमेशा जंगल में घूमते हैं अकेले, आप साथ में, हमको जाने दो। लेकिन नंद बाबा के मन नहीं मानता, उनको भली प्रकार से समझा देना चाहता है, पहले बार सिटी में जा रहे हैं, ये कि छोटे मोटे सिटी नहीं है, कैपिटल सिटी है, हैं, तो महाराज स्वयं के इतने दाव पेंच में है। तो बोल रहे थे, देखो जब जा रहे हैं किसी के साथ झगड़ना नहीं, हम क्यों झगड़ते हैं किसी के साथ, हम कभी झगड़ते किसी के साथ, डेली मारते हैं, झगड़ते थोड़ी। ऐसा करना, किसी कोई वस्तु को छूना नहीं है, पहले बार जा रहे हैं, कब देख करके इसे छूना नहीं, पकड़ना नहीं, और देखना जो विशेष ड्रेस पहन करके जब कंस के राज कर्मचारी पुलिस पुलिस खड़े होंगे, उनसे कभी मान अपमान नहीं करना, जो बोलेंगे सम्मान से बात करके मान लेना, कोई सामान छूना नहीं, ये नहीं करना, कई बात उनको समझा देना चाहते, लेकिन उनका कहां है सब सुनने के लिए इच्छा है, वो तो बोलते बाबा सब आप गए और आए, दादा साथ में है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। बस अपना अपना लकुट पकड़े और कछनी तो मारा थे, एक एक पगड़ी बांधे, लकुट अपने अपने हाथ में ले लिए, चल पड़े। कौन सा उनका डिसिप्लिन करना था, चल पड़े। जितने बड़े बूढ़े गोप, जितने बैलगाड़ी के बैल भी जोते गए थे, सारे एक टक दो आंख लगा कर उन्हें देखते रहे कि उनके प्राण जा रहा है, जब तक वापस ना आए तो उनका मन प्राण उन्हीं में लगा रहे। बोलकर गए जल्दी आ जाएंगे, गए। अब मथुरा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। मथुरा तत्कालीन एक महा दिग्विजय सम्राट का राजधानी था। तो उनका जो चारों तरफ का परिखा जो दीवार था बहुत ऊंची बहुत चौड़े वाली था, और उसमें जो गोपुरम बना हुआ था उसमें सोने और ताम्रे के बड़े बड़े तोरण लगा गया था, विशाल विशाल कवाट लगा गया था नगर द्वार में, और इतने भवन उसके ऊपर में सब सैन्य सब बैठे हुए थे, सैन्य सामंत सशस्त्र बैठे हुए थे, प्रहरी। किवाड़ ऐसा था कि कभी युद्ध के समय बंद होता था, बंद हो सकता नहीं तो खुला रहता था प्राय। और उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, नगर के बाहर में पुष्पोद्यान था, पुष्पोद्यान के पास में आम्रा उपवन है, उसके पास में जमुना जी है, इस प्रकार के नगर के बाह्य दृश्य है। नगर के अंदर प्रवेश किए ही देखे कि पूरा रास्ता धो धा करके साफ कराया गया था, हाथी के सूंड से नानाविध अगुर चंदन इतर छिड़का गया था, दोनों तरफ सब तोरण लग करके पुष्प लग विशेष रूप से सजावट हुआ था। ये तो सारे सिटी का गली गली तक भी सफाई छिड़काई और सजावट हुआ था। नगर में प्रवेश करते ही देखे दोनों राजपथ के दोनों ओर से बहुत ऊंची ऊंची भवन है, हर भवन के ऊपर में सोने चांदी के मढ़ाव है, मढ़ाया गया सोने चांदी के ऊपर। हर भवन के ऊपर अलग अलग पताका झंडा उड़ रहा है, अलग अलग रंग के, अलग अलग चिन्ह के, कोई वैश्य कैटेगरी के हैं, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, अलग अलग रूप को दिखाने के लिए अलग अलग प्रकार के रंग, अलग अलग प्रकार के चिन्ह, अलग अलग प्रकार ध्वजा उड़ रहा है। सारे भवन के सामने विशेष प्रकार रंगोली में चित्रकारी विशेष कुशलता से रंगोली डालते ना, सुंदर सुंदर मंडल बनाया गया था, चित्रकारी बनाया गया था। सारे भवन के सामने लगभग आम्र पल्लव के साथ भरे हुए कलश, उसके ऊपर नारियल रखा गया था, मंगल दीप जल रहा था, केले के साथ फल के साथ पत्ते के साथ केले के खंभे सब लगाया गया था, केले के पेड़ सब भवन के सामने, आम के पत्ता के तोरण लगाया गया था, इस विशेष सजावट था दीप आदि के साथ, और भवन में सारे लिपाई पोछाई क्लीन था। सब भवन के ऊपर में देख रहे थे जगवाख्य था, जो खिड़की था उसमें सुंदर सुंदर अगुरु और चंदन की धुआं निकल रहा था, बड़े सुगंधी फैल रहा था, और कहीं कहीं मयूर तोता सारी पेट चिड़िया सब हैं पले हुए थे, कई चिड़िया तो इधर घूम रहे थे, उनके लिए जहां तहां दाना पड़ा था सब चिड़िया इकट्ठा आकर चुग रहे थे, दाना चुग रहे थे। और राज रास्ता के बीच बीच में बड़े बड़े चबूतरा बना हुआ था चौराहे में, और रत्न जटित सारे रत्नों से मढ़ा हुआ था चबूतरा, बड़े सुंदर सजावट वहां का भी हुआ था, जहां बैठ करके लोग आपस में चर्चा बात कर सकते हैं। ऐसे सुंदर भव्य तरीका से सजावट नगर है, एक साइज में एक रोड चलता है, एक कलर इस प्रकार सब चल रहा था, और उसको देख रहे हैं। इधर मथुरावासी नागरिक जब से उनको खबर ही मिल चुका था कि राम श्याम आ चुके हैं, ये खबर तो बिजली की जैसे फैल गया था, खबर पाते ही सारे अपने अपने काम धंधा छोड़ करके तैयार अपने अपने जगह में बैठ गए थे। मैं नहीं छोड़ूंगा, यही रास्ते में तो आएंगे, मैं ही खड़ा रहूंगा। उसको अपने अपने पोस्ट अपने अपने पोजीशन संभाल रह गए। भीड़ बढ़ने लगा, जो बड़े बड़े व्यापारी वर्ग थे बोले अरे ये वासुदेव के सर्वसमर्थ बड़े पराक्रमी बालक आ रहे हैं, ऐसे जाएंगे तो उनके लिए पुष्पमाल्य उनके भेंट के लिए पूजा की संभार रेडी कर रहे थे, बड़े बड़े ब्राह्मण उनके पूजा की स्वागत के लिए आरती थाली तैयार कर रहे थे, और कोई लोग उनके लिए रंगोली डाल करके उनको आरती उतारेंगे तिलक करेंगे उसके सजावट कर रहे थे। सारे दोनों तरफ से खचाखच भीड़ लगा था। बाकी जो स्त्रियां थी मथुरा नगर के, उनको जब पता चला कि वही राम श्याम आ रहे हैं जिनका गुण वो सुन सुन करके इतने सुने हैं, वही दोनों बालक आ रहे हैं, तो उनका छन छन होने लगा प्राण। वो तो दौड़े, सभी का घर तो राजपथ के साइड में नहीं था, किसका घर इधर था उधर था, वो अपने अपने पहचान लोगों के पास आ गए। स्त्रियां हैं बाहर रास्ता में तो नहीं जा सकते, कोई बारंडा में, बड़े बूढ़िया लोग सब बारंडा में, बाकी सब छत के ऊपर और खिड़की के पास, बड़े भीड़ लगा दिए। सभी का मन में आज परम उत्कंठा, जिनके बारे में इतने 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 सुन चुके हैं, आज क्षण भर के लिए क्यों ना हो आंख खोल करके इस रूप को एक बार देख तो लूं, एक बार तो देख लूं इस परम पुरुष के छवि को कैसा है। तो इसलिए पूरी ताकत से, पूरी उत्कंठा का अंश लेकर के दौड़े थे। जब दौड़ कर आ रहे थे, बोले अरे इतने बड़े भीड़ होगा तो ऐसे जाएंगे, थोड़ा तो ड्रेसिंग पहन के होकर जाना चाहिए। जब दर्शन के लिए दौड़े थे तो कोई जल्दी से जाना है, भीड़ ना हो जाए, तो अलंकार पहन रहे थे। जो अलंकार कान में पहनना था उसको नाक में, नाक का अलंकार कान में, कभी अंडरगारमेंट ऊपर, ऊपर गारमेंट नीचे, कभी क्या, ऐसे सब उत्पटांग तिलक, कोई ध्यान नहीं, शरीर की शुद्धि नहीं, जैसे तैसे लपट कर दौड़ पड़े। दौड़ पड़ के पूरे छात खिड़की जहां तहां भर गए, और उनको स्वागत के लिए दुर्ब अख्यत पुष्प चंदन दधि हरिद्रा सब लेकर बैठे। आएंगे तो इसी रास्ता में ना, हमारे घर के सामने निकलेंगे, मैं तो थोड़ी फेंकूंगी, थोड़ी देखूंगी, थोड़े भूलू शब्द दूंगी, माने मंगल ध्वनि करूंगी। खचाखच भीड़ दोनों तरफ से, और बीच में पूरे ग्वाल बाल के साथ घिरे हुए दोनों भाई राम और श्याम, मत्त गंध की गति से, गजराज की गति से धीरे धीरे अपने पोज से बढ़ रहे हैं, हिलते डुलते चल रहे हैं, देख रहे हैं दोनों तरफ, देख रहे हैं, सारे बालक के साथी लोग भी देख रहे हैं। देख देख करके उनको लगा उनको मजा नहीं आया, अरे जिनको पूरा जीवन इतने सुंदर कानन में, जमुना के किनारे जो वन है, भरे हुए फल की वृक्ष की बीच में, लदे हुए पुष्प की लतिका के बीच में, जहां सुंदर सुंदर कोयल आदि चिड़िया की कुहतान करते हैं हमेशा, जहां भ्रमर का गुंजान हमेशा चलता है, उसी के बीच में इसने प्राकृतिक परिवेश में जो हमेशा जीकर आए, आज ये नेचुरल तो नहीं, उसे क्या कहा जाएगा, बनावटी, बनावटी कलर डाल करके इसी चिड़िया को पिंजड़े के अंदर डाल करके, और धुआं अगुरु सुगंध डाल करके, इसे बनावटी सुगंधी से बनावटी परिवेश में उनको पसंद होगा, उनको बिल्कुल पसंद नहीं हुआ। एक बालक तो दूसरे से कहता है, कहले अरे पता नहीं ये नगर वाले ये पिंजड़ा में कैसे रहते हैं, छोटी छोटी पिंजड़ा ऊपर में ऐसी खिड़की ऐसी देखते रहते हैं, ये क्या है भाई, ना खुली बगीचा है, ना कोई पेड़ है, ना कोई कुछ है, ये कैसे रह पाते हैं इधर, श्वास रुद्ध नहीं हो जाता उनका। ऐसे विचार करके उनको कोई महत्व के नहीं लगा। मथुरावासी तो सोच रहे थे, नगरवासी, अरे ये बच्चे तो निपट गांव के हैं, फर्स्ट टाइम आ रहा है, सिटी कैपिटल है इसमें आ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग, इतने भारी सजावट, इतने सोने चांदी वस्तु को देखकर तो पहली बार देख रहे हैं। उनको लग रहा था कि आएंगे, देखेंगे, घंटों हाथ लगाएंगे, कैसा है, सुनेंगे, है कि नहीं नरम गरम, फिर पूछेंगे ये क्या है भाई, लेकिन ये काहे को देखेंगे, सुनेंगे, छुएंगे, कुछ नहीं कर रहे, बेकार है, ऐसी उपेक्षा करके बढ़ते रहते हैं। उनका तो बोले अरे ये तो कुछ पूछते नहीं हमको, मथुरा के इतने सजावट शोभा का कोई कदर ही नहीं करते, उनको आनंद नहीं, बोले ये तो बेकार है सर, ऐसे कोई जीवन जीते हैं पिंजड़े के अंदर रह करके, और ऐसे उपेक्षा करके बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन भले बढ़ते जाए, उनका जो चाली, उनके जो रूप, उनका जो सौंदर्य था, उनको देख करके संपूर्ण जनपद मथुरा जनपद वासी आज तो अपने आप को भूल ही चुके हैं, सोच रहे हैं अगर कोई रूप कोई सौंदर्य है तो वही है, क्या अपरूप शोभा है, कैसे चाली है, सारे गौरव के खान है, सब वही सोच रहे हैं। जैसे वो हैं उनके साथी भी ऐसे हैं, सब बिना जाने पद बढ़ रहा है, आकर उनको पद स्पर्श करूं, उनको कोई भेंट दूं, उनको प्रणाम करूं, उनके आरती उतारूं, उनके तिलक, बड़े बूढ़े तो ब्राह्मणों को जाकर तिलक की करी डालते, आरती उतार करते, पुष्पमाल्य देना, भेंट देना, सब करते हैं, और ऊपर से जो स्त्रियां थी दूर ने ऊपर से दधि अक्षत चंदन दुर्बा फूल डालने, वर्षा होने लगा, पूरे रास्ता भर गया इस मंगल चिन्ह से, और मंगल ध्वनि, मंगल शब्द, दीप आदि सब करते चले। और धीरे धीरे वो बढ़ते चले जा रहे हैं। सारे लोग सोच रहे हैं कि इतने अपरूप सुंदर जी वास्तविक इन दोनों के बारे में हम जो सुने थे वो है सही। भगवान का चारों तरफ से कहीं से लोग दूर दूर से उनको प्रणाम करते थे, उनको प्रशंसा करते थे, उनको भेंट देने के लिए तैयार थे। तो सभी के लिए सभी को स्वीकार करना था कृष्ण बलराम को। तो इसलिए कहीं एक और एक दिशा पर अगर दृष्ट नजर उठाकर देख लेते तो उस दिशा ही धन्य हो जाता, इस गृह उस जितने भी पशु पक्षी सब धन्य हो जाते। किसके ओर देख लेते, किसी के उपहार को भेंट को स्पर्श कर देते, किसके ऊपर मथानत कर लेते, किसको एक मंद मुस्कान कर देते, इसी प्रकार से सभी को धन्याति धन्य करते हुए बढ़ते आगे चले जा रहे थे सामान्य गति में। पीछे जो जन समुदाय रह जाता था केवल उनके शरीर भले रह जाता, उनके मन को साथ में ले जाते, मन छोड़ करके शरीर रह जाता। आगे बढ़ते चले गए। अब जाते जाते सारे चित्त लगाकर बैठे हैं, जाते जाते आगे देखते हैं कि थोड़ी देर में एक अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। भीड़ के अंदर दूर से एक मोटा तगड़ा कले कुचटे ये मोटी मोटी मूछ रखा है, बड़ी बाघन रखा कंठी डाला हुआ है, तगड़ा आदमी एक आ रहा है, शराब पिया है, आंख लाल लाल है बिल्कुल, और बड़े एंट करके आ रहा है, एक बार गर्भ में डांट करके चल रहा है। उनके पीछे 50 करीब उनके फॉलोअर चल रहे हैं, सब सोने की डंडी लिए हैं कंधे पर, और उसमें सब रत्न जटित सुंदर आयरन किया हुआ नए कलर किया हुआ फर्स्ट क्लास वस्त्र, एक एक अलग अलग रंग के अलग अलग प्रकार के डिजाइन के वस्त्र सब टांग करके 50 लोग चल रहे हैं, कई सैकड़ों वस्त्र टांग कर चल रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि ये महाराज के मुख्य रंगकार है, रजक है, धोबी है जन्म से जाति का, लेकिन सफाई नहीं कर रहा था, उनका लोग हैं सफाई करने वाले, वो तो कलर करने वाला था, रंगकार था, लेकिन था बड़ा गोष्ठी के, महाराज के कृपा पात्र था, महाराज का सारे महाराज का अकेले नहीं पूरे राज खानदान के मंत्री सेनापति आदि के जितने सब ड्रेस सब वही कलर करता था, फिट फाट करता था, करके उनको पहुंचाता था। और काल जो महा उत्सव होने वाला है उसी में महाराज श्री जो वस्त्र धारण करेंगे उस वस्त्र को तो अभी उन्हीं के पास ही है, वही वस्त्र लेकर जा रहा था महाराज को देने के लिए, तो इसीलिए तो ये वस्त्र में कहीं कोई खरोच ना लग जाए, कहीं सिकुड़ ना आ जाए, तो बिल्कुल केयरफुल था। और इतने दोनों तरफ से मथुरावासियों की भीड़ देख करके उनको अपने महत्व दिखाना चाह रहा था, मैं भी कुछ हूं, इसलिए बिल्कुल डंट करके चल रहा था। अरे महाराज के काल के जो भव्य ड्रेस पहनेंगे पोशाक लेकर मैं चल रहा हूं, इसलिए सब सावधान, आज मथुरा के राज रास्ता पर पूरा मेरा ही अधिकार है, आप लोग सब साइड हो जाओ, अगर किसी को चलना है रोड में तो हमसे हट करके बच करके बगल होकर चले जाओ, ये नहीं चल सकते। अब ऐसे हट कर चल रहा था और उनका गर्व को देख करके उनके पीछे जो उनके पार्टी के लोग थे वो तो और हट कर चल रहे थे, उनके पीछे थे हमारे सरदार ऐसा है, किसी को खातिर नहीं कर रहा था, बड़े बड़े पूज्य व्यापारी ब्राह्मण सेठ साहूकार लोग थे, किसी को और खातिर नहीं था, कोई सम्मान का भाव नहीं था, बड़े ऐसे गर्वित अहंकार भाव से चल रहा था। उनके पीछे पीछे पार्टी भी चल रहे थे, कई लोग तो उनके आंटे में आजकल जो डालते हैं ना कि ब्याग क्या बोलते हैं उसको, एक कमरे में कि ब्याग डालते हैं ना जिसे पैसा पत्र डालते हैं, वो तभी भी था, वो आंटे में बांध कर रखे थे, कई किसी को दिए होंगे स्वर्ण मुद्रा सब डाल कर रखे थे, वो भी चल रहे थे। तो सारे दो तरफ से जो भीड़ था सब देख रहे थे उनको, बड़े बड़े लोग भी देख रहे थे, सब चुप थे, भाई हैं महाराज की विशेष कृपा उन पर है, अब भाई उनके मुख्य रंगकार है तो क्यों नहीं इतने का अहंकार करेगा, वो आज तो फेस्टिवल का ड्रेस लेकर जा रहा है, हे बड़ा दुष्ट हो क्या करेंगे, कुछ बोल नहीं सकते, कंस महाराज के भाई के कारण सब जानते थे उनका प्रभाव को। तो इसलिए वो चल रहा था, वो तो सोच रहा था कि सारे जो बड़े बड़े लोग भी उनको रोड छोड़ देते हैं, ये बच्चे कहां से आ गए, उनको देख रहा था, बोले बच्चे लगते हैं तो यार मथुरा के तो नहीं है, यहाँ के तो मथुरा के तो बच्चे नहीं हो, कहीं दूर का होंगे, चलो कोई गांव के लगते हैं उनकी वेशभूषा के, तो चलो तो गांव के है तो मैं जा रहा हूँ, मुझे देख करके तो ऐसे ही भाग जाएंगे, यही सोच रहा था, तो ऐसे भाग जाएंगे करके। लेकिन उनका इस प्रकार के अकड़ करके चलना, इस प्रकार के भाव भंगु देख करके गोप बालकों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने आपस में बातचीत करने लगे, बोले क्या हम लोग को विवश है उनको रास्ता छोड़ने के लिए, ऐसे चल रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है उनका व्यवहार, तो क्या करें। तो बोले चलो हम क्या करें, दाऊ बाबा तो साथ में, दाऊ दादा साथ में, देखते हैं वो क्या करते हैं, हम उनके पीछे हैं, जो करेंगे हम साथ में हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, वो बाकी भीड़ तो भीड़ को फाड़ करके चल रहा था बिल्कुल, और बिल्कुल खूब शराब खच करके पिया था, माताल होकर के यही से उदंड चल रहा था गलमुछ निकाल करके। अब आते आते देखा है कि बालक तो रास्ता डंड कर, वो भी चल रहे हैं आंट करके, वो भी छोड़ने वाले नहीं, वो भी छोड़ने वाले नहीं, बोले अरे आके खड़ा हो गया, आंख लाल लाल करके देखा उनको, ऐसे गुस्से में देख रहा था, अरे तुम कहां से दुष्ट बालक आ गए उच्छृंखला, मैं आ रहा हूं, बड़े बड़े लोग छोड़ दिए, आप रास्ते से हट नहीं रहे, अरे दुष्ट बालक है वो, तो आपने गुस्सा में देख रहा है, सब देख रहे हैं कि श्याम ने चला गया आगे, कृष्ण ने आगे बढ़ गए। जाके बोले भैया रंगा, उसको रंगकार बोलते हैं, ऐसा करो आपके पास इतने सारे वस्त्र है नए नए, अब बड़े रत्न सब जड़ा हुआ है उसमें, अब बड़े बढ़िया बढ़िया उसको आयरन करके कलर करके ले जा रहा है, हम देखो ऐसे पहने नहीं कुछ, हमको थोड़ा दे दो ना, आप बता रहे हो हम एक्चुअली आपके महाराज के भगिने हैं, बड़े आदर है हमारा प्रति, हमको स्पेशल वीआईपी पास में बुला गया, तो इसलिए हमारा कपड़ा बड़ा नहीं है, थोड़ा दे दो ना, अगर हमको ड्रेस दे दोगे तो आपका निश्चित कल्याण होगा। इतने गुस्सा में टेम्पर में है उसको जाकर ड्रेस मांग रहे, फिर सबके लिए एक जोड़ी मांगते कुचलता, हम सभी के लिए दे दो, हमारे किसी का पास नहीं। वो तो उसको सारे लोग देख रहे हैं ये क्या चल रहा है भाई, ये इतने क्रोध में उदंड में है वो जाकर उनको मांग रहे हमको ड्रेस दे दो सबके लिए। वो तो उसको सुन करके मानो पंचम ताल पर चला गया, बोला अरे इतने उदंड है, चिल्ला करके बोला, बोला अरे उच्छृंखला लड़के, जिंदगी में कभी ऐसे कपड़ा देखा था तुमने, ऐसा कपड़ा पहनकर गाय चराते जंगली कहीं के हैं, आ गए अरे आपकी ये उद्धत है, राजा का ड्रेस मांग रहा है, फिर एक जोड़ी भी नहीं सबके लिए, हाँ आप लोग जिंदगी भर गाय चराने वाले ग्वाल है, पढ़े लिखे नहीं है मूर्ख, ऐसे ड्रेस पहनने के लिए आते हैं, इतने उदंड है, हटो मेरे सामने से, भाग जाओ यहां से, नहीं भागोगे तो जान छूट जाएगा, अभी राजा को कंप्लेन करूंगा, मैं ही मार दूंगा आपको, राजा के बात तो क्या है। ऐसे बक बक कर काली बकने लगा, सब नगरवासी दोस्त साइड में देख रहे हैं, अरे ये जिसे लड़के को कोई असत व्यवहार करना चाहिए, उनके ऊपर कोई क्रोध करने लायक है क्या, हो उनके ऊपर ऐसे बोली बोलता है, ऐसे गाली करता है, कैसे किसी को सहन हो, सब अपना अपने कान में हाथ देख रहे, अरे दुष्ट, अरे उनको देखते ही किसी का क्रोध समित हो जाए, इतने सुंदर सलोने लड़के हैं, कितने सुंदर बोली बोल रहे हैं, मांग रहे हैं, अरे क्या हो गया दे देना तो, अरे महाराज कंस के तो आदरणीय भगिने है, उन्हीं के लिए स्वयं अपने गाड़ी भेज करके, अपने मंत्री भेज कर बुलाया, उनके लिए पूरे सिटी सजा रहा है, फेस्टिवल कर रहा है, उन्हीं के लिए इतने बड़े आयोजन है, तो बेचारा मेरे ड्रेस नहीं तो दे देना, क्या हो गया उनके तो है, हाँ क्यों इतने शर्म के उनको आकड़ के बाद दुष्ट गाली दे रहा है, इसमें गड़बड़ी क्या दी ड्रेस देने में। लेकिन वो तो गुस्सा में गाली बकते चला जा रहा था, सारे ग्वाल बाल तो उनको सुनकर सहन नहीं, बोले हैं हमारे कानों को इसी बोल रहा है, गाली दे रहा है, सब आपने लकुट के ऊपर हाथ कस लिए, बोले थोड़ा सा इशारा हो एक साथ में उनका सर में सबका लठी पड़े। लेकिन इतने होने का अवकाश ही कहां था, इतने टाइम नहीं मिला, हजारों लाखों लोग दोनों तरफ से छात से ऊपर से नीचे से रास्ता से देख रहे हैं कि यो गाली बक रहा था, सब गुस्से कर रहे थे, इतने में एक पैर आगे बढ़ गए, कृष्ण ने एक पैर आगे बढ़े, ऐसे हाथ कर दिए, हाथ को ऐसे एक झटका सा कर दिए, उनके करके अग्रभाग के अंगुली के अग्रभाग का ऐसे झटका से देखते पलक झपकते ही उनके सर निकल करके रास्ता में कूदने लगा, उछलने लगा। सब देख रहे आश्चर्य होकर, अरे कैसे, कोई हथियार नहीं, हाथ नहीं, कुछ नहीं, एक बार ऐसे ऐसे हाथ कर दिए, सर निकल करके कूद रहा है रास्ता में, धड़ इधर गिर पड़ा, रक्त के फवारा छूट रहा है। ओ तो तालियां बजाए, जो उनके साथी लोग थे तालियां बजा दी। अरे उनका पीछे जो 50 उनके फॉलोअर थे, सोने के डंडे से बढ़िया बढ़िया रॉयल ड्रेस लेकर के थे, उनको एक सेकंड नहीं लगा, वही की वही सारे फेंके, राइट बैक गियर लिए, फुल स्पीड में भागे। पीछे मुड़कर देखे नहीं कि साइड भी देखे नहीं, पीछे के दबाव, और जब ताली बजाने का साउंड सुने और तेज से भागे, लिपचाने पीछे कर रहे हैं शायद। भागते भागते उनके जो आंटी में सोना के मोहर था उसको भी खोलकर भागे, बोले उनके पीछे ना आए, नहीं तो। मन में सोच रहे थे, भाई देखो हम बहुत सुनते हैं लड़के लोग, कई असुरों नायकों को मार डाले हैं, हम तो ना कोई योद्धा है ना असुर है, भाई हम धोबी है, हम जान नहीं हराने आए हैं, भाई हम कहीं जाकर बच जाएंगे, हमारे तो रोटी चाहिए हमको, हम मरने नहीं आए। भागे दौड़े जीवन प्राण लेकर के, दूर जाकर कोई गली से इधर उधर कहां चले गए उनको देखा नहीं। मथुरा वासी भी वो देखे नहीं, धोबी और आए नहीं सिटी में, वो चले गए बाहर। बिल्कुल दिन दोपहर में, राइट 2 बजे का समय होगा, दोपहर में भोजन करके मध्यान्ह में निकले थे, दोपहर में 2 बजे बीच बाजार में, बिल्कुल नगर की मेन चौराहे के ऊपर, खुली मार्केट में, अरे खुली मार्केट में नहीं, पूरे मथुरावासी, बच्चे बूढ़े बूढ़ी बालिका तक, सारे खचाखच भीड़, कई जगह में कंस महाराज का सिपाही सैनिक सशस्त्र भी खड़े हैं, उनके सभी के सामने बिल्कुल निडर निर्भय होकर के ऐसे ही गर्दन उड़ा दिए जिसे कोई पता ही नहीं चला। सारे नगरवासी हाथ उठाकर ताली बजा कर, इसी को कहते हैं वीरता, इसी को कहते हैं तेजस्विता, यही है, धन्य है हमारे प्रभु तो यही है, अगर कोई मथुरापति हो वही है। अभी सबको समझ में आया, क्या समझ में आया, कि ये जो मथुरा में इतने बड़ी हाई बजट पास करके महाराज कंस ने सजाए, पूरे गली गली को छिड़काए, धुलाई किए, चंदन गली से रोली से सजाए, धूप बत्ती अगर सारे कलश केला सब लोग, इतनी भारी सजावट हुआ, वो लोग हम लोग तो सोच रहे थे कंस ने सजावट कर रहा है फेस्टिवल के लिए, धनुर्यज्ञ के लिए, लेकिन वास्तविकता अभी पता चला, क्या हमारे इस मधुपुरी के, इस मथुरा के वास्तविक स्वामी तो पधार रहे हैं आज, उन्हीं के आगवानी के लिए ये सजावट मथुरापुरी स्वयं कर रही है, अपने आप को सजा रही है। कंस को पता क्या है, जोग माया सबके जनमानस के प्रेरिका है, सबके पीछे वो प्लान बनाकर कर रहे हैं, अभी पता चला। कंस के प्रति सारे जनपद वासियों के मन में जो भय था, जो आतंक था, मानो धो करके साफ, एक प्रश्न नहीं रहा। आपस में बोलने लगे, देख लो कंस आकर जो करना है कर लो, ये चुनौती है, क्या करना है कर लो। कोई बोल लेते अभी महाराज आ सकते हैं, क्या आएगा महाराज देखना, वो क्या आएगा, कोई पुलिस भी नहीं आएगा, कुत्ता भी नहीं भेजेगा, उनका डेड बॉडी ऐसे पड़ा रहेगा, उनके घर वाले भी आएंगे नहीं दिन में, रात को आकर से उठा के लेंगे संस्कार करने के लिए, देखा नहीं। बोलती अरे देख नहीं रहा, मैं तो बाजू में खड़ा था ना, क्या नरे इसे मारने के बाद हाथ में उनका ब्लड लगा था, ऐसे जाकर के राजकीय पोशाक से कपड़ा हाथ पोछ रहे थे जैसे कोई गीला कपड़ा पोछ रहा है, रुमाल में गीला हाथ पोछ रहा है, ऐसे ऐसे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। मन में थोड़ा सा टेंशन, इतने बड़े मर्डर हो गया सामने सभी के बीच में, इतने बड़े भारी मर्डर किए, इतने भारी आदमी को मर्डर कर दिए, थोड़ा सा मन में डर भय सोचना कुछ होना चाहिए कि इतने बड़े कोई घटना, कुछ भी नहीं। जैसे कोई दूसरे लड़के बोलते अरे क्या है क्यों भाई आ गया ना क्यों नारद तो सुना नहीं काल ही गया था कैसी काल शाम को गया था कैसी जानता ना हाँ महासुर कैसी ना सेनापति उसको भेजा था उसको तो गले में हाथ डाल करके ऐसे ही सुहा कर दिए इतने महासुर को जो देवता डरते थे तो उनके तुलना में ये धोबी था कितना ये तो एक मच्छर के बराबर नहीं था उसके सामने हिसाब से तो एक मच्छर को मारने से कोई किसी को लगता है क्या महत्व तो लगता है कि इतना बड़ा मर्डर हो गया आप कभी जाते होंगे रोड में एक मच्छर आकर डिस्टर्ब करता होगा ऐसे कर दिया उसको मच्छर मर गया तो बोलेंगे ओ क्या करा डेथ हो गया मर्डर हो गया अब क्या करूं सोचना चाहिए सोचेंगे कोई महत्व तो नहीं देंगे ऐसे उनको तो मच्छर मार दे देखा नहीं हाथ ऐसे उड़ा दिए हाथ ऐसे हिला दिए मर गया मच्छर जैसे मर गया वो तो हाथ टच भी नहीं किए अंगुल्याग्र के स्पर्श मात्र से उनका धड़ और सर अलग हो गया मच्छर जैसा मार दिया मच्छर को मारकर कोई चिंता कोई महत्व तो देता क्या कोई महत्व तो नहीं वो पड़े उछल रहा है उसका सर वो धड़ इधर उछल रहा है वो आगे बढ़ गए आगे बढ़ करके थोड़ी देर आगे सारे जो उनके पार्टी के लोग थे वो सारे कपड़ा फेंक कर भाग गए थे तो भगवान आगे बढ़ गए बढ़ के जा करके दो चार कपड़ा इधर उठाकर देखे देख कर एक नीलासा बड़े चमकीला बहुत सुंदर सुंदर रत्न जड़ा हुआ था बोले दाऊ भैया ये आपके लिए मैचिंग है बलराम के सामने लेकर खड़े हो गए तो बलराम उसको ले लिए भैया के अनुज के हाथ से ले लिए तो फिर कन्हैया ने सारे अपने साखियों को आंख के इशारा से बोल दिया ले लो अपना अपना हिसाब से चुन लो तो सब झपट पड़े कई संख्या में थे अब कई ड्रेस भी था सब जा करके उठाने लगे बात यह था कि उनका एक्सपीरियंस नहीं था कपड़ा पहनने का फर्स्ट टाइम लाइफ में अभी देख रहे हैं कपड़ा छू रहे हैं कई टेलर के पास गए नहीं थे नाप नहीं दिए थे कपड़ा दुकान में नहीं था मार्केट फर्केट था नहीं क्या करें बेचारे और ये बिल्कुल सजे धजे राज रॉयल ड्रेस अब कृष्ण बोल रहे पहनने के लिए सब गए एक एक उठा रहे थे उनको समझ में नहीं आ रहा था कैसे करें कैसे पहनेंगे उसको तो एक दूसरे को देख रहे थे वो कौन सा उठा रहा है कैसे उसको उठा रहा है तो उसको फेंक कर ऐसे देख कर कुछ उठा रहा था किसी समझ में नहीं आ रहा था जैसे देखता करके जैसे एक एक वस्त्र उठाए उठा करके वैसे पहनना तो नहीं आता कैसे पहने ऊपर से नीचे बाएं डाएं किधर कुधर जैसे तैसे लिपट लिए कहने से सही होगा पहन नहीं पाए आपस में लिपट लिए शरीर में लिपट करके अब सब अपने आप को देखने लगे आईना तो था नहीं देखेंगे कैसे फिट है कि नहीं एक दूसरे को देखने लगा कैसे हाँ चलेगा चलेगा कुछ बोलते हाँ चलेगा तो सब तो बाकी इतने सारे सोने के डंडी पड़े थे इतने सारे स्वर्ण मुद्रा पड़े थे किसी को हाथ नहीं लगाए कन्हैया ने बोले करके सब अपने अपने हिसाब से और जो अपने इतने रॉयल ड्रेस लिए इतने मूल्यवान पोशाक जो अपने पोशाक जो पहने थे गंदे पोशाक अभी तो साबुन फान लगाए धोए नहीं थे उसको उतार के रख दे उसको पहन ले नहीं वो पहने उसी के ऊपर ही मढ़ा लिए उसके ऊपर ही चढ़ा लिए उसको ड्रेस अब चढ़ा कर एक दूसरे को देखते हैं किसी को तो पहनना नहीं आता है ड्रेस ना भगवान स्वयं कभी करता पहने थे ना उनके पार्टी लोग कभी पहने थे फर्स्ट टाइम सभी का फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो सब जैसे तैसे और रंगकार को मार करके इस कपड़े को अपने ऊपर डाल करके सारे नगरवासी देख रहे हैं बोलते देखो यही देखना था अगर हमारे मधुपुरी के कोई वास्तविक राजा हो कोई हमारे रक्षा करता कोई हम सभी के स्वामी हो तो ये होना चाहिए ऐसे वीरता होना चाहिए ऐसे स्वाभाविक उनका जो रूप जो गुण सुने थे बहुत उनके बारे में इतने उनको असुर कुमारे पराक्रम ऐसा था बहुत पराक्रम वह सुने थे लेकिन आज तो आंखों हाँ, सामने देख ही रहे हैं प्रैक्टिकल आंखों के सामने आज देख ही रहे हैं ये तो बड़े अद्भुत अरे इतने बड़ी भारी शरीर वाले ये धोबी को ऐसे हाथ हिला करके सर उड़ा दिए उसका कोई अस्त्र नहीं कोई शस्त्र नहीं कुछ नहीं बालक है बाकी किसी का सहायता भी नहीं लिए और इतने साहस से निर्भय से कर लिए कोई उनको बोलेगा कोई सोचेगा कोई किसी के लिए खातिर नहीं लाखों की भीड़, उनके बीच में अपने राजा के अपने खास आदमी को मर्डर कर दे, भय नहीं होगा? कोई बोलेगा, जो बड़े बड़े पुलिस सब घोड़े सवार लेके सशस्त्र खड़े थे, वो देखते देखते पीछे पीछे हो गए सब, कि कोई ना देखे कि मैं भी देख रहा हूं करके। ये मुझे दोस्त लेगा, राजा को बोलेगा ये देखा था, कुछ नहीं बोला, ये देखा था, वो सबको प्राण के भय है। अरे इतने मोटे तगड़े को जब ऐसी उड़ा दिए, हमारा क्या है? ये घोड़ा संभालेगा? घोड़ा नायक असुर सेनापति कैसे गया था, उसके गला में हाथ डाल करके मार दिया उसको, तो उसको कितना टाइम लगा मरने के लिए? कोई आगे नहीं आ रहे थे। सारे जो बड़े बड़े सैनिक थे, बड़े बड़े सेठ साहूकार योद्धा जो थे, सभी का मन में जो भी इतने संचित आतंक, जो भय था राक्षस कंस के प्रति, सब मिटते गया। सबको मिटाते हुए, सबका मन हृदय को जीतते हुए, सबके सामने अपने अपरूप सौंदर्य प्रकाश प्रकट करते हुए, आज मथुरा के मुख्य राजदास्तां पर, मुख्य राजदंड में कृष्ण बलराम अपने ग्वाल बाल साथी के साथ ऐसे ही बढ़ रहे थे कि देखने योग्य है। उनका इस शोभा का वर्णन तो अवर्णनीय है। हरे कृष्ण। बाकी आगे बढ़कर क्या करते हैं कल बताएंगे।